ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वी विल चैंट ओनली कुछ श्लोक, उसमें से कहेंगे, पूरा नहीं कहेंगे। श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, श्री जी महारानी श्रीमती राधा रानी से ब्रज भूमि की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री कृष्ण भगवान भी उनके अधीन हैं। हम हमेशा जानते हैं कि शक्तिमान जो है उसकी महानता उसकी शक्ति में होती है, शक्ति ही शक्तिमानता का गौरव है। और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की कई शक्तियां हैं। जय हो। भगवान की तीन शक्तियां हैं प्रधान, एक शक्ति अंतरंग शक्ति जो राधा रानी स्वयं है, दूसरी शक्ति बहिरंगा शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी जो दुर्गा देवी के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, और शक्ति तीसरी जो है वो है तटस्थ शक्ति यानी कि मार्जिनल पोटेंसी जो बीच में होती है उसकी। और वो कौन है? हम सब लोग जो है भगवान की तटस्था शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी। और तटस्था शक्ति होने के कारण हम सोच सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम चाहे तो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में जा सकते हैं अपनी तरफ से चुनकर, या अपनी तरफ से चुनकर राधा रानी का आश्रय ले सकते हैं। दुर्गा देवी का आश्रय का मतलब यह है तीन गुणों का प्रभाव, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हम बद्ध हो सकते हैं। वी कैन गेट बाउंड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और अंतरंग शक्ति का प्रभाव का मतलब है, उसके अधीन होने का मतलब है श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाना। तो जीव के कल्याण जो है वो श्रीमती राधा रानी के चरणों की शरण लेने में है। श्रीमती राधा रानी जिसको आश्रय देती है वो कभी भी माया के प्रभाव में नहीं फंसता। देयर इज नो पोटेंसी इन माया टू कैप्चर अ पर्सन हु इज इन द हैंड्स ऑफ राधा रानी। हमेशा हमारे भक्ति के पहले सालों में हमको बताया जाता था कि अगर हम किसी घर में प्रवेश करना है तो कभी कभी वो कुत्ते रखते हैं बड़े एकदम अल्सेशियन बिग डॉग्स, यू नो, उसको देख के डर लगता है, आगे जाने का हिम्मत नहीं कर सकता। तो जब तक वो कुत्ता सामने खड़ा है आदमी घर में प्रवेश नहीं कर सकता है अपने मालिक को मिलने के लिए। बहुत कोशिश करता है, अपने आप जूझता है कुत्ते के साथ, लेकिन वो सफल नहीं होता है घर प्रवेश करने के लिए। लेकिन बीच में एक विश्राम लेता है, पीछे जाता है और मालिक को फ़ोन करता है कि मैं आया हूँ अभी, मुझे मिलना है आपसे, तो आ जाओ, क्या तकलीफ है, मैं आपका प्रतिनिधि बीच में खड़ा है। तो आता है, तुरंत आ जाता है, टॉमी हटो यहां से। टॉमी तुरंत अपना पूछ डाल के अंदर करके चला जाता है, और आप एकदम सीना तान के घर में प्रवेश करते हो, कुत्ते को ऐसे उंगली दिखाते। क्या मतलब होगा इसका? वो जो कुत्ता है वो बहिरंगा शक्ति का प्रतिनिधि है। जब तक वो बीच में खड़ा है तब तक मालिक से मिल नहीं सकता, लेकिन वो कुत्ता भी मालिक के अधीन होता है, मालिक का ही कुत्ता है, मालिक की आज्ञा मानता है वो। मालिक ने चुप कहा तो तुरंत बैठ जाता है। उसी तरह से जब तक हम अपने आप माया देवी से जूझते रहेंगे तब तक यहीं तड़पते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में, हाँ आध्यात्मिक आध्यादैविक आदि भौतिक क्लेश में लिप्त रहेंगे, तड़पते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनको पुकारेंगे, हे कृष्ण हे गोविंद, बोलो
हे कृष्ण हे गोविंद,
हे कृष्ण हे गोविंद,
हे कृष्ण हे गोविंद,
द्रौपदी ने असहाय होकर पुकारा था तभी वो आए थे। जब तो वो अपने आप कोशिश कर रही थी, हाँ भीष्मदेव से, धृतराष्ट्र से, द्रोण से, इससे उससे, पति देवों से, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, टस से मस भी नहीं हुआ कुछ। लेकिन जब सब सहारे छोड़कर अपने आप पर भी उसको भरोसा था, अपने दांतों में आंचल बना के रखा था उसने कुछ समय के लिए कि चलो मैं अपने दांतों के बल से अपनी शील को बचाऊंगी, लेकिन दुशासन के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था, वैसे 500 दांत उखाड़ लेगा अपने एक झटके से, वो क्या संभाल पाएगी अपने पल्लू में। लेकिन जब अपने ऊपर का भरोसा भी उसका हट गया, सबके ऊपर भरोसा भी हट गया, वो एकदम पूर्णतः सही रूप में असहाय हो गई, और उसने असहाय होकर पुकारा तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। अब बोलेंगे पहले क्यों नहीं आए, जानते नहीं थे क्या पहले, वो तो वहीं थे। वो क्या कहते हैं उसको, एक्सक्लूसिव सरेंडर, हाँ जिसको कहते हैं कि शुद्ध शरणागति की अपेक्षा करते हैं। आपको अगर किसी और पर भरोसा है ट्राई कर लो, हाँ यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम। धन पे भरोसा है, डॉक्टर पे भरोसा है, हाँ या किसी प्रॉपर्टी पे भरोसा है, किसी कॉन्टैक्ट पे भरोसा है, कोई इन्फ्लुएंस पे भरोसा है, जो अपना लो अपने अपने तरफ से कोशिश कर लो, सबसे हार जाओगे तो मैं बैठा हूँ आ जाओ। तो वहीं थे वो, उधर ही खड़े थे। जब सबकी उनकी विचारधारा आशा सब खत्म हो गई तो तुरंत भगवान ने अमरा अवतार लिया। अमरा अवतार मतलब वस्त्र के रूप में, अनगिनत वस्त्र के रूप में उन्होंने ऐसे वस्त्र को प्रकट किया वहां पर कि दुशासन जैसा वीर दो एक 10,000 हाथियों का बल था उसके हाथ में, बेहोश हो गया, वो चक्कर आकर बेहोश हो गया, खींच खींच के बेहोश हो गया। यह है शरणागति की शक्ति। शरणागति एक ऐसी क्रिया है, हाँ शरण तो सब लोग हैं हम लोग, नो इनवॉलंटरीली हम लोग सब लोग शरण है प्रकृति, लेकिन शरणागति का मतलब क्या है, जो समझ बूझ कर, आगति यानी भगवान की क्या कहते हैं उसको, चुनकर भगवान को चुनकर उनकी शरण में जाता है, उसको शरणागति कहते हैं। शरण तो है, ये मृत्यु के शरण है, जन्म के शरण है, बुढ़ापे के शरण है, क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ हम चाहते हैं अभी तुरंत 20 साल के बन जाए, लेकिन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हम तो शरण है, समय के शरण में है, प्रकृति के शरण में है, हर शक्ति के समय में है हम लोग शरण में, तूफान के शरण में, आंधी के शरण में, भूकंप के शरण में, क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, समय इतना प्रभावी है। लेकिन शरणागति जब कृष्ण और राधा की लेते हैं तो सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति पर कोई प्रभाव काम नहीं करता है, समय का और गुणों का, त्रिगुणों का, वो त्रिगुणातीत हो जाता है। यही रहस्य है, अगर हमारे जीवन में खुशी और आनंद और समाधान प्राप्त करना है तो हमें राधा और कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति का जो चॉइस है, ये हमारे हाथ में है, ये कोई शक्ति दुनिया से हमको छीन नहीं सकती है, ये हमारा जो चॉइस है, चुनने की शक्ति जो है। कहाँ जाना है हमको, बहिरंग शक्ति के जाना है, अंदर जाना है कि अंतरंग के अंदर जाना है, ये हम चुन सकते हैं। जैसे एक शराबी का उदाहरण देते हैं हमेशा, एक शराबी था, उसको बहुत व्यसन था शराब का, और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे शराब से छुड़ा लो, मैं शराब से अधीन हूँ, मुझे आप मुक्त करा लो। कई बार गया, डॉक्टर ने बोला ऐसा करो ऐसा करो, सुना नहीं, फिर गया डॉक्टर साहब शराब से छुड़ा लो। तो एक बार क्या हुआ, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर तुरंत उठ के अपने चेयर से भाग गए और बाहर गए, और बाहर जाके एक पेड़ को पकड़ा उन्होंने, बोले छुड़ाओ छुड़ाओ मुझे, पेड़ से छुड़ाओ पेड़ से छुड़ाओ। तो मरीज बोला, वो जो ही मरीज था, डॉक्टर साहब पागल हो गए क्या, बोले नहीं मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, मुझे इस वृक्ष से मुक्ति दिला दो। बोले वृक्ष को तो आपको पकड़े हुए हैं, आप ही खुद पकड़ के बैठे हैं उसको। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम खुद शराब को पकड़ के बैठे हो, मुझे कह रहे हो छोड़ो छोड़ो छुड़वाओ छुड़वाओ छुड़वाओ, तुम्हारे ही हाथ में है। समझते प्रभु जी माया में फंस गया हूँ, प्रभु जी कुछ करो, कुछ कृपा करो, छुड़वाओ माया से। नहीं, हमारे ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। जिस समय चुनेंगे, अभी मैं कह रहा था कि आप गाओ, भगवान को पुकारो, तो कोई यहाँ दिख रहा है, कोई वहां दिख रहा है, कोई डिजाइन दिख रहा है, कोई बोर्ड दिख रहा है, तो नहीं, अभी इस समय सब कुछ छोड़ो और एकाग्र होकर उन्हीं को पुकारो। ये भी हमारे हाथ में। कुछ लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं, कुछ लोग मन में बोल रहे हैं, लोग पुकारो, हृदय से पुकारो। अगर आपके पीछे अगर बड़ा शेर लग जाएगा तो कैसे पुकारेंगे हम? हाँ, सोचो आप, समझो आपके पीछे अभी शेर लगता है तो कैसे पुकारेंगे? जो मिलेगा उसको पुकारेंगे, डॉक्टर केदार, डॉक्टर अवनीश पुकाओ, जल्दी आ जाओ, शेर लगा है पीछे, तभी हम ऐसे बोल लेंगे, डॉक्टर अवनीश तुम कहाँ हो, मेरे पीछे शेर लगा हुआ है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। उसको कहते हैं असहायता, मतलब डेस्परेट कंडीशन। यू हैव टू बिकम डेस्परेट फॉर कृष्ण। अभी हम माया के लिए डेस्परेट हैं, पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं, लेकिन हमको कृष्ण के लिए डेस्परेट बनना है। वो जीवन सफल हो जाएगा जब हम उनके लिए तड़पेंगे। सर कैजुअली पुकारेंगे तो भी कैजुअली सुनेंगे, है ना? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जिस प्रकार से उनको पुकारेंगे उसी प्रकार से वो सुनेंगे। जब द्रौपदी ने पुकारा तो झट से बाहर आ गए, एक झटके में आए पुकारा। एक और कहानी ऐसी है, जब द्रौपदी ने अपना अक्षय पात्र का पूरा खाना खा लिया था, सबको खिलवा दिया था, वो उसका भी भोजन हो गया था, उस समय दुर्वासा जी आए 60,000 शिष्यों को लेकर। तो द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को, हे माधव कैसे करूं मैं, अभी पहले से वनवास में है, दुर्वासा ने शाप दिया तो कहीं कहीं रह जाएंगे। तो उस समय माधव जी क्या कर रहे थे, ना मथुरा में थे, ना वृंदावन में थे, ना जंगल में थे, वो द्वारका में अपनी पत्नी के द्वारा 56 भोग का आनंद ले रहे थे। और सोच सकते हैं, जब रुक्मिणी देवी भाग्य लक्ष्मियों की पटरानी जो है कृष्ण भगवान की, 16,108 में नंबर 1 पत्नी जो है, तो स्वयं कुशल स्वयं पाकी है, रसोई बनाती है, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते उनके क्या क्या गुण है, उनका कितनी सेवा होती है, कितनी कुशलता है उनके अंदर, कितने गुण है उनके अंदर। वो रुक्मिणी देवी अपने हाथ से श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग अर्पण कर रही है और पंखा कर रही है, बड़े प्रेम से खिला रही है। तब ये माधव की पुकार सुनते हैं द्वारकाधीश, झट से उठते हैं, बैठे खा रहे हैं, झट से उठ के चले जाते हैं। रोने लगती है, अरे क्या अपराध हो गया हमारा, क्या गलती हो गई, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। वो कहाँ रुक रहे हैं, वो तो गए निकल के तुरंत तत्क्षण प्रकट हो गए झोपड़ी में द्रौपदी के जंगल में। द्वारका कहाँ, उनका जंगल का निवास कहाँ? बोले हे द्रौपदी, हे कृष्ण, क्या बात है? बोले दुर्वासा मुनि आए हैं। बोले कुछ बात, मुझे कुछ बताओ, मैं खुद भूखा हूँ, मैं भोजन छोड़ के आया, मुझे खाना खिलाओ। बोले माधव कैसे आप मजाक कर रहे हो, मैं संकट में हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ सुनने का नहीं है अभी, जाओ पात्र ले आओ। माना नहीं, पात्र तो खत्म हो गया, मैंने खा लिया उसमें से। नहीं, जाओ जाओ, देखो कुछ एक आधा दाना होगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। बोले कैसे अब ऐसे कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या, मैं किस कितने कष्ट में हूँ, कितनी परेशानी में हूँ, क्या ग्रेविटी है मेरा, मतलब क्या कितना विस्तार है मेरे संकट का, पता नहीं उनको कितना गहरा संकट है मेरे सामने, फिर भी वो अपने भूख की बात कर रहे हैं, मुझे भूख लगी खाना खिलाओ। तो एक दाना खाते हैं और पूरे विश्व को ऐसी अनुभूति होती है कि भर पेट खीर खाया हमने। और जो जंगल में गए हैं, नदी में गए स्नान करने के लिए 60,000 शिष्य दुर्वासा के नेतृत्व में, वो भी डकार दे रहे हैं खीर की, बोला अभी कैसे खाएंगे, चलो यहीं से भाग जाते हैं। फिर कृष्ण भगवान बोलते एक काम करो, भीमदेव गदा ले लो अपनी, गदा गदा लेकर उनको आमंत्रण देने जाओ। तो गदा लेके जाते, दूर से भीम आ रहा है गदा लेके ऐसे चलते हुए, अरे बाप रे भीम गदा लेके आ रहे हैं, चलो उल्टी तरफ से भाग जाते हैं, इस किनारे से प्रवेश किया था उस किनारे में भाग जाते हैं, सब लोग वहां से स्विमिंग करके वहीं से पल जाते। पुकारना ऐसे होता है, कैसे, जिस तरह से पुकारा तत्क्षण भगवान आते, तत्क्षण, कोई और सहारा नहीं है उनका, कोई इंद्र को नहीं पुकारा, वरुण को नहीं पुकारा, कोई हनुमान जी को नहीं पुकारा, उन्होंने कृष्ण को पुकारा। तत्क्षण आने वाले एक ही व्यक्ति है, गजेंद्र ने पुकारा था उनको, कहाँ थे, जंगल के अंदर सरोवर में डूब रहे थे वो, और वो मछली मगरमच्छ उनको खा रहे थे। ऐसे कहते हैं करोड़ों 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 मील का जो अंतर था, वो विष्णु भगवान ने गरुड़ पर बैठकर कुछ सेकंड के अंदर कवर किया उन्होंने, ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। और तत्क्षण उसको मगरमच्छ के मुंह से अपने दिव्य हाथों से निकाला और मुक्त कर दिया और मगरमच्छ को चक्र से काट डाला। ये सब कुछ ही पलकों की बात है, यहां से वहां होते हुए सब खत्म हो गया, क्योंकि पुकार कैसे थी उसकी, गजेंद्र की, हाँ वैसी पुकार होनी चाहिए। ये सब हमारे हाथ में है। कैसे रोना है बालक के हाथ में है। वो रोया, उसके खिलौना दे दिया, चुप हो गया। तो माँ बोली ठीक है अभी खेलो, खिलौने से हम जाके रसोई बनाते। फिर और थोड़ा देर रहा, फिर एक नया खिलौना आके दिया, फिर वो तुरंत उसमें गुम हो गया, खेलने लगा, रोना बंद कर दिया। फिर माता रसोई गई। एक बार ऐसे आता है जब आप ये खिलौना दो, वो खिलौना दो, खाना खिलाओ, सब फेंक देता है और जो से और रोता है, और कोई देगा तो और जो से रोता है। तो माता फिर गैस बंद कर दी है, सब कुछ खिलौने फेंक देती है और बालक को अपने गोद में लेती है। उस समय उसको माता चाहिए, खाना नहीं चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए। उस समय जब उसको माता चाहिए तब माता अपने आप को उसको अर्पण करेगी। जब खिलौना देने से रुक जाएगा तो और खिलौना देगी। उस तरह से हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान धन देते हैं और धन में हम मशगूल हो जाते हैं। हरी वो खुश हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं पुकारना वगैरह। मतलब ठीक है, बाय बाय, सी यू, एंजॉय, आई कम बैक अगेन। फिर और कुछ रोते हैं, बोले अच्छी बीवी नहीं है हमारी, सुंदर बीवी चाहिए। तो सुंदर बीवी मिल जाती है, फिर हम लोग भूल जाते हैं फिर से। एक समय ऐसा आता है कि किसी में दिल नहीं लगता है, ना पैसे में, ना धन में, ना बीवी, ना बच्चे में, ना परिवार में, ना प्रॉपर्टी में। बोले कृष्ण भगवान, हम अभी आपको चाहते हैं, वी वॉन्ट यू कृष्णा। तभी वो आ जाते हैं। तब तक खिलौने बेचते रहते हैं, लो खेलते रहो, जब तक दिल लगे खेलते रहो, जब दिल भर जाएगा मैं हूं ना बैठा हूं, तभी हम पुकारेंगे। तो ये पुकारने की जगह है बरसाना धाम, जहां पर स्वयं कृष्णा के पुकारते हैं श्री जी की दया के लिए। वहां पर आपको बताएंगे मान मंदिर में उसकी कथा। तो जो बरसाना धाम है, ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, वो स्वयं व्यक्ति रूप प्रकट होकर यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर विराजती है। यहाँ पर हम लोग श्रीजी मंदिर में गए थे, वो भानुगढ़ कहते हैं उसको। छोटी सी कथा इसकी ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने सत्ययुग के आरंभ से तपस्या करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी तो जानते हैं ना आगे क्या होने वाला है, सत्य में क्या होगा, त्रेता में क्या होगा, द्वापर में क्या होगा, कली में क्या होगा। तो जानते हैं कि द्वापर के अंत में आने वाले हमारे ठाकुर जी महाराज। तो जैसे हम लोग कैसे 3 महीने पहले बुकिंग करते ना, टिकट मिलना चाहिए ना, कंफर्म टिकट, तो 3 महीने पहले से बुकिंग डेट याद करके करते हैं कि अपना सीट रिजर्व होना चाहिए, जाना है हमको यात्रा में। जैसे ब्रह्मा जी ने मतलब सीट रिजर्व करने के लिए केवल लाइन नहीं लगाया रेलवे के विंडो पर, 60,000 साल तपस्या किया उन्होंने, 60,000 ईयर्स। और वो भी ऐसा कुटू के लड्डू और साबुदाना खिचड़ी खा के नहीं किया पेड़ से गिरे हुए पत्ते ना सूखे वो खा के तपस्या किया उन्होंने 60,000 साल। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई लाभ नहीं मिला। फिर सत्ययुग के अंत में फिर दोबारा 60,000 साल तपस्या किया। उसके बाद में कृष्ण भगवान माधव प्रकट हो गए। वो क्या बात है, बोले हमको आपके चरणों की रज चाहिए, सेवा चाहिए। वही ब्रह्मा जी हैं जो वहां पर तपस्या कर रहे हैं, वहां पर परिक्रमा दे रहे हैं। तो भगवान का ठीक है करो, मेरे ब्रज में चले जाओ, ब्रज तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाए। बोले आप वृषभानुपुर जाओ, वृषभानु राधा रानी के पिताजी का नाम है, उनके पूर में जाओ, वहां पर विराजो। बोले कैसे विराजो, बोले पत्थर बन जाओ। तो वो क्या कहते हैं कि हमको आपके और आपके भक्तों के चरणों के रज हमेशा हमारे सर पे पड़ती रहे, ऐसी इच्छा है। अगर ब्रह्मा बन के जाऊंगा तो फिर वो संकोच नहीं करेंगे क्या। तो जो आपके घर में प्रधानमंत्री आते हैं बोलते हैं कि हमारे सर पे आपके चरणों के रज चाहिए, तो आप बोले अरे आप तो प्रधानमंत्री है तो आप तो हमारे लिए वंदनीय है। लेकिन वो पत्थर बन के आपके चौखट पे आ जाएंगे तो आप आराम से पैर रख के चले जाएंगे उसके अंदर। तो कहते कि मेरे आपके भक्तों को संकल्प भी नहीं होना चाहिए और हृदय से ऐसे अपने आप स्वतः ऐसे मिलने चाहिए, उसके लिए पत्थर बनना होगा। तो पत्थर बन गए वो, इसलिए यहाँ का जो पहाड़ है छोटा सा है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, हम लोग चढ़ पाए कुछ लोग। 4 उसकी चोटियां हैं, इसलिए इसका नाम है वर स्यानो। वर यानी कि सुंदर और स्याने यानी कि चोटियां, इसलिए इसके एक नाम ये भी है वर स्यानो। जिस जगह पर सुंदर सुंदर चोटियां हैं पर्वतों की, जो चढ़ने लायक भी है, बढ़िया से चढ़ सकते हैं। इसलिए हम सबको याद करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ब्रह्मा जी के सर पे चल रहे हैं, जो हमारे वंदनीय आचार्य हैं, सबसे प्रथम जीव हैं, सबके परम 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 पिताजी हैं। वो यहाँ पर पत्थर बन के श्री जी, उनके गोपियाँ, कृष्ण, उनके सखा, इनके चरणों के रज लेने के लिए यहाँ विराजमान है। कितनी नम्रता है देखो। हाँ, ये सब भीड़ में आपको दिखा नहीं पाया, वहाँ पर मंदिर में शुरुआत में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान है, वहाँ पर पहले दंडवत करते हैं, हम तो नीचे ही करते हैं, ऊपर चढ़ने के पहले ही श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं ऊपर। और वहीं पर वो जगह है जहाँ पर श्री जी का मूर्ति प्रकट हुआ था, वो थोड़ा बाद में बताता हूँ आपको। तो आप सोच सकते हैं, हाँ इतना बड़ा आदमी जिसके पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, वो यहाँ पर पत्थर बन के श्री जी महारानी को अपनी लीला करने के लिए जगह बनाने के लिए बैठे। तो एक है भानुगढ़, जहां पर भानु महाराज, विश्व भानु महाराज और उनकी दिव्य सुंदर पत्नी कीर्तिदा देवी, उनकी पुत्री है वो, उनका महल है वो, यहाँ पर राधा रानी का बचपन गुजरा। हम कल जो है, परसों हम रावल जाएंगे, जहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ था, वहाँ से उनको यहाँ लाया गया। यहाँ पर उनका जन्मस्थल नहीं, लेकिन कई अलग अलग द्वापर युग आते रहते ना। ऐसे कहा गया है कि 1000 द्वापर युग जब समाप्त होते हैं तो 1000वें द्वापर युग में कृष्ण भगवान अवतार लेते। चलते रहता ना, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चलते रहते चलते रहते चलते रहते। 999 होने के बाद में जो 1000वां द्वापर युग आता है तो उसमें कृष्ण भगवान आते हैं। उसके बाद का जो कलयुग है 1000वां कलयुग, उसमें कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आते। और हमारा सबका भाग्य यह है कि वो इसी चक्र में हुआ है। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उसके पहले चक्र में द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए हैं। प्रभुपाद वुड से ऑलवेज दैट जस्ट नाउ कृष्ण हैड कम ओनली 5000 ईयर्स बैक, जस्ट नाउ महाप्रभु चैतन्य केम ओनली 525 ईयर्स बैक। जस्ट नाउ क्यों बोलते हैं, क्योंकि 43,20,000 ईयर्स का एक चक्र होता है सत्य त्रेता द्वापर कली का। ऐसे 1000 चक्र जब होते हैं, आप सोच सकते हैं ना, कितने गिनती में नहीं कर सकते, सो मेनी ईयर्स, यू कैन नॉट इमेजिन। उसमें एक बार कृष्ण भगवान का अवतार होता है, एक बार चैतन्य महाप्रभु का होता है। इसलिए हम लोग भाग्यवान है कि हमारे कुछ ही समय पहले अभी उनका आविर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर पर्वत बन के बैठे हैं, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये दानगढ़ है, दूसरा पीक, दूसरा चोटी, इसमें दान लीला है, बताएंगे आपको आगे जाके। उसके आगे जाएंगे तो मानगढ़ है, मानगढ़ में राधा रानी मान करती है, मतलब भगवान को प्रेम को बढ़ाने के लिए और क्रोध करती है, रूठ जाती है और रूठ कर पहाड़ पे जाके बैठती है, तो मानगढ़ है। और उसके आगे है विलासगढ़, जहाँ पर बहुत सुंदर झूला लीला विलास करते हैं भगवान राधा रानी और गोपियों के साथ। ऐसे चार चोटियाँ हैं, बीच में एक जगह है, जैसे कि ये जो धाम बरसाना है इसमें चार विशेषताएं हैं, हाँ, खोर खिरक गिरी गहवर, ये चार चीजें हैं। खोर यानी कि जलाशय, जहाँ पर छोटा छोटा जल होता है, तालाब होता है, से कई तालाब यहाँ पर हैं। बृषभानु महाराज का खुद का तालाब है भानोखर, फिर पीली पोखर नाम का तालाब है, फिर राधा सरोवर हम जाएंगे अभी वहाँ सारा है, बहुत बिहार कुंड है, दोहनी कुंड है, ऐसे कई जल के यहाँ पर जलाशय हैं। खोर हो गया खिरक, खिरक यानी कि जहाँ पर थोड़ा बड़ा होता है। खोर का मतलब है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बताया, खोर का मतलब है नैरो लेन, मतलब रास्ता, और खिरक का मतलब है जलाशय। जलाशय के वर्णन तो कर दिया मैंने आपको, खोर का मतलब है जब दो पर्वत की चोटियां ऐसे मिलती है ना, तो बीच में एक रास्ता बनता है, केवल एक आदमी, वन टाइम, वन वे ट्रैफिक, यहाँ से जाना है तो वहां से बंद, वहां से आना तो यहाँ से बंद, वन टाइम ओनली वन पर्सन कैन गो, उसको कहते हैं खोर। तो ऐसे एक खोर है यहाँ पर, सांकरी खोर, सांकरी का मतलब नैरो, बहुत ही अरुंद, बहुत छोटी सी, जहां पर वहां से कृष्ण भगवान आते हैं, यहाँ से गोपियां आती हैं, उनको रोक लेते हैं, यू कैन नॉट गो फ्रॉम हियर, टैक्स भरना पड़ेगा, आप वो बताएंगे आपको कल। खोर खिरक गिरी यानी कि चार चोटियां, गिरी यानी पर्वत, और गहवर, ये बहुत विशेष चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये गहवर बंद जो है, मराठी में बोलते हैं ना गहिवर, यानी कि कैसे कहें उसको, इंग्लिश में क्या, हिंदी में समझता नहीं, गहवर मतलब जब हम भावना से एकदम आतुर हो जाते हैं, वो दिल बिल भर के भावना हमारे ऐसे अश्रु के रूप में प्रकट हो जाती है, उसको कहते हैं गहिवर, इमोशनल, वेरी डीप इमोशनल, भावा भाव क्या कहते हैं, हाँ, भावातुर हो जाते हैं, भाव से भाव विभोर हो जाते हैं, हाँ, भाव विभोर सही बोलते हैं उसको, तो भाव विभोर का मतलब है गहिवर। और ये गहवर बन जो है, ये राधा रानी अपने हाथ से बनाया है, पर्सनली विद हर ओन हैंड्स उन्होंने यहाँ की जड़ी, क्या कहते हैं उसको, वेली लता पता पेड़ सब अपने हाथ से लगाए, अपने हाथ से बड़े प्रेम से सींचा है। क्यों? उनके प्रियतम कृष्ण है उनके आनंद के लिए, जहाँ पर वो बैठे, यहाँ पर पुष्प वितान है यानी कि फूलों से बना हुआ बिस्तर है, फूलों से बनाए हुए शेज है, झूला है, अलग अलग व्यवस्था है उसके अंदर, वो सारे सुंदर सुंदर व्यवस्था जो है, खुशबू भरी, अच्छे बाष्प भरी, ठंडक भरी, आनंद भरी, शीतल मृदु और कोमल और सुगंधित हवा यहाँ बहती है, सारा इंतजाम जो है राधा रानी ने बनाया अपने हाथ से। और वहाँ पर प्रिया प्रियतम मिलते हैं, वो है गहवर बंद, वो बरसाना से चिकसोली गांव तक, मतलब मान मंदिर जहाँ तक है, बीच का जितना भी वन देख रहा है आपको, वो सब गहवर वन है। और वो एकदम प्राइवेट कुंज है, जैसे कि हमारे घर में बेडरूम में आप शायद कभी कभी नहीं आ सकते, लेकिन हॉल में आ सकते, वो तो पब्लिक एरिया है, दूध वाला गेट पर ही आ सकता है, अंदर भी नहीं आ सकते, लेकिन कुछ खास मित्र होते हैं और दोस्ती होते सखियाँ होती है, वो आपके बेडरूम में भी आ सकती है, किचन में भी आ सकती है। वैसा ही इनका प्राइवेट चैम्बर है, यहाँ पर केवल सखियाँ और कृष्ण उनके सखा आते हैं और लीला करते हैं, यहाँ पर किसी राक्षस का प्रवेश नहीं है। बहुत विशेष बात है, ये फर्क है वृंदावन धाम में, पूरे ब्रज में और यहाँ पर। सब जगह भगवान ने राक्षस को मारा है, हरिश्वर को मारा है गोवर्धन में, केशी को मारा है वृंदावन में, धेनुका को मारा है उधर तालवन में, मधुवन में मधु राक्षस को, और लवणासुर को बहुत लोगों को मारा है भगवान ने। गौचारण करते करते बकासुर को खदीरवन में मारा है, सबको वध किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पर किसी का वध करने का कथा नहीं है। वहां पर एक ही कथा है, बहुत सुंदर कथा है। वो कथा ऐसी है कि हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट कंस, थोड़ा उनका भी गौरव करना चाहिए, क्योंकि उनका गौरव करने से उनको मारने वाला का गौरव बढ़ता है। हाँ, अगर कोई मशीन गन लेके आके चूहे को मारा, पेपर में न्यूज नहीं आएगा, अरे मशीन गन का इस्तेमाल चूहे को मारने के लिए किया और इसका गौरव सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर तुल्य बल व्यक्ति को मारा तो फिर वो पेपर में न्यूज आ सकता है, भाई इतने से आदमी ने 100 किलो वजन के आदमी को पटक दिया पूरा जमीन पे। तो न्यूज किससे बनता है? जब सनसनीखेज बात होती है तो न्यूज बनता है उसमें। तो वैसे हमारे कंस महाराज जो है, उन्होंने कई बड़े बड़े राक्षसों को अपने वश में करके रखा था, इतने शक्तिशाली था वो कंस। ये वाज अ सोफिस्टिकेटेड डीमन, नॉट ऑर्डिनरी डीमन विद बिग टीथ एंड बिग हॉर्न्स, यू नो। वो बहुत ही बुद्धिमान राक्षस था, वो भगवान का द्रोही बुद्धि से करने वाला था। उसने तृणावर्त, पुतना, अगासुर, अरिष्टासुर, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को अपने मांडलिक मतलब दास बना के रखा था, उनसे टैक्स भी लेता था वो, और उनको ही भेजता था वो, जाओ अभी तुम्हारा नंबर है, जाओ मार के आओ उसको, वो खुद मर के आता था, वो वापस नहीं आता था। तो ऐसे ही अचानक बीच में क्या हुआ, नंद महाराज और विश्वानु महाराज ने सोचा कि अभी बहुत राक्षसों का आतंक हो रहा है, जब से जन्म हुआ है कृष्ण का तब से बार बार जमुना पार हो बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं, चलो हम वापस चलते हैं नंदगांव, क्योंकि पहले यही बसे थे वो। जब बालक नहीं हुआ दोनों को तो दोनों जमुना किनारे गोकुल में गए, और रावल में राधा रानी का जन्म हुआ, गोकुल में कृष्ण भगवान मथुरा से जन्म लेकर आए, फिर वहीं से आतंक शुरू हुआ, बोले अभी वापस चलने का समय हो गया है, दूर जाएंगे जरा। तो नंदगांव में आए नंद महाराज और कृष्णभानु महाराज वापस बरसाने में आए, तो कंस बोला अरे आदमी जाते हैं तो बोलते हैं कोई है नहीं वहां पर, वो नीला बालक भी नहीं है, मोर पंख वाला भी कोई नहीं है, गोरा बालक भी नहीं है, वो जो हल हल लेके घूमता है कोई नहीं वहां पर, सब लोग शिफ्ट हो गए। तो वो सेनापति को भेजते अपने, हाँ नाम क्या उनका, हाउ और बुलाओ, दो, एक हाउ और एक बुलाओ। तो आए वो दो दो बड़े और दो छोटे ऐसे आए, उनका काम क्या था, कृष्ण भगवान को पकड़ना है और मार देना है या तो पकड़ के लेके आना है। तो देखा उन्होंने कृष्ण भगवान नंदगांव में खेल रहे अपने सखाओं के साथ में, जाके उनको दोनों पकड़ने के लिए जाते हैं, जैसे ही छूते उनको पत्थर बन जाते हैं, वहीं के वहीं बड़े बड़े दो छोटे और दो बड़े ऐसे भयंकर मॉन्स्टर जैसे बन जाते हैं। तो यशोदा मैया उसका क्या इस्तेमाल करती है, कृष्ण भगवान को डांटने के लिए, डराने के लिए, देखो टाइम पे खाना खाने को नहीं आ रहे हो, देखो हवा आएगा, ऐसा करके इस्तेमाल किया वो जो पत्थर बने हुए जो राक्षस थे उनका। अच्छा वो भी नहीं आया वापस आए, तो फिर कंस परेशान हो गया, अरे क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, वो खुद आया। आप सोच सकते हैं खुद मतलब कितना इमरजेंसी रहेगा उसके लिए, मथुरा से 50-60 किलोमीटर का आज का अंतर है, पता नहीं उस समय कितना अंतर था। आ गया जैसे ही बरसाना नंदगांव के हद में आ गया ना, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, अंदर से गड़बड़ हो गया, तो क्या गड़बड़ हो गया, कंस स्त्री बन गया अचानक, ही बिकेम अ लेडी, तो ये तो वो कैन इमेजिन कैसे अवस्था होगी, चक्रवर्ती सम्राट कंस जी महाराज कंसनी गोपी बन गए। तो वो परेशान हो गया, सारा आवेश खत्म हो गया उसका, कृष्ण को ढूंढने के लिए ऐसे आए थे, कहाँ है वो मेरा काल, मैं अभी उसका नष्ट कर दूंगा, ऐसे मूड में आए थे, एकदम ऐसा नम्र हो गया एकदम वो, और सखियां तालियां पीट रहे, अरे वाह वाह बढ़िया कंस महाराज, बहुत बढ़िया काम हो रहा है आपका। तो वो गिर जाने लगे, रोने लगे और पुकारने लगे, गोपियों मुझे माफ कर दो, कैसे भी करके छुड़ा दो इस पंगे से, ये तो गड़बड़ हो गया मेरा पूरा। बोला कुछ नहीं, अभी आप यहाँ पर रहो, अच्छी तरह गाय की सेवा करो, गोबर के कंडे बनाओ, उसको सुखवाओ, इकट्ठा करो, सर पे ढोलो उसको और जमा करो हमारे घर पे, बढ़िया काम चल रहा है आपका। अरे बहुत रोया कंस, बहुत रोया, मतलब तब वो कंस नहीं था, वो कंसनी गोपी थी, बहुत रोई बेचारी गोपी। 6 महीने तक गोपियों ने उनके हाथ से कंडे लिपवाए, सोच सकते हैं आप, हाँ कंस महाराज इतना व्रत को बसवे करने वाले यहाँ पर तो बेचारे 6 महीने के बाद में बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, तो फिर दया आई उनको, विश्वानु महाराज आए,
और देखा कंस को, अरे बेचारा हम तो उसको टैक्स देते हैं जाके उधर, बड़े सम्मान के साथ में दंडवत करते हैं और टैक्स पे करके आते हैं मथुरा में, तो हमारे मालिक तो यहाँ पर कन्या बने हुए हैं। तो राजा रानी को बोलते हैं कि करो कुछ, कृपा करो इस पर। तो फिर बुलाती है राजा रानी उसको, सब सखियां भी उनको राजा रानी पास ले जाती है, बोलते ये कि हमारी मालकिन है, वही आपको कुछ कर सकती है। लेके आते हैं तो राजा रानी कहती है, दोबारा अगर यहाँ लौट के आओगे तो परमानेंट स्त्री ही रहोगे, वादा करो कोई आपका अब यहाँ पर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, और तुम भी नहीं आओगे, जितने आएंगे सब स्त्री बन जाएंगे, सब लोग कंडे लिपेंगे। बोले कोई बात नहीं, वादा करता हूं मैं, कोई नहीं आएगा यहाँ पर, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आऊंगा, कतई नहीं आऊंगा। सोच सकते ना कि हाउ डेस्परेट ही मस्ट बी, 6 महीने के बाद की बात है ये, पहले दिन की बात नहीं है। बोले कोई बात नहीं, ये मेरा कुंड है किशोरी कुंड, यहां पर कूदो और आपको पुनः अपना पुरुष शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो वो सोचता भी नहीं है क्या पहना है क्या नहीं, सीधा झंप लगाता है उसके अंदर, सीधा तुरंत पुरुष बन जाता है और वैसे ही गीले कपड़े में भागता है मथुरा तक, पीछे मुड़के भी दिखता नहीं। क्यों? अरे कहीं मूड चेंज हो गया तो क्या होगा फिर? इसीलिए इस क्षेत्र में कोई राक्षस ने प्रवेश नहीं किया। अभी क्यों करती है भगवान ऐसे, राधा रानी क्यों करती है ऐसे? क्योंकि इस क्षेत्र में उनको अपने हृदय की जो अंदरूनी लीलाएं हैं, प्रेम लीलाएं, उसको प्रकट करना था। उसमें सब राक्षस वाक्षस का वाद वाद करना जो है ना, वो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। ऐसा कहते हैं कृष्ण ने कभी राक्षस को नहीं मारा, कृष्ण के अंदर सभी विष्णु अवतार जो है विराजमान है। तो जब भी राक्षस आते थे तो कृष्ण के अंदर विष्णु स्वरूप जो है वो प्रकट होकर राक्षस को मार के फिर वापस प्रवेश करते थे। कृष्ण भगवान तो केवल लीला करते हैं, केवल खेलते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। हाँ, एक विदेशी आदमी यहाँ पर आया था रिसर्च करने के लिए कि हु इज सुप्रीम गॉड, सब जगह गया, देवी को देखा तो पूरा त्रिशूल लेके किसी को मार रही है, फिर किसी और के पास गया तो किसी और राक्षस को मार रहे हैं, और शंकर जी की माला लेकर जप कर रहे हैं, और सबको दर्शन किया उसने, बोला सब कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनको देखा तो क्या है, बंसी बजा रहे हैं कोई काम ही नहीं इनको, केवल आनंद ले रहे हैं, और ये भगवान हो सकते। यस, लॉजिकली कंक्लूडेड, नॉट बाय स्क्रिप्चर्स, जस्ट देख के उनको समझ में आया कि ये आनंद लेने वाले, ये जो है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, एक ही व्यक्ति है वो श्री कृष्ण भगवान है। तो फिर शांत होकर चला गया, वो आनंद हो गया। तो उस तरह से इस जगह पर प्रेम की लीलाओं को प्रकट करने के लिए उन्होंने सब राक्षसों को इस लीला के माध्यम से यहां से भगा दिया, और क्षेत्र को बोलते ना राक्षस आर नॉट वेलकम हियर, बिवेयर ऑफ, नोबडी शुड कम हियर एक्सेप्ट फॉर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये भगवान का जो है, जो पूरा ब्रजभूमि भगवान का घर है, और ये घर का सबसे अंतःपुर है, अंतःपुर का मतलब है इनर चेम्बर्स, एकदम प्राइवेट चेम्बर्स है, यहाँ पर सब कोई नहीं आ सकते हैं। आप सब लोगों को सुमति राजा रानी ने यहाँ पर प्रवेश दिया है, इसलिए उनका धन्यवाद कीजिए। हाँ, राजा रानी सबको नहीं बुलाती, यहाँ तक सब कोई पहुँच नहीं पाता है, वो वृंदावन में आएंगे, बिहारी दर्शन करेंगे, यहाँ वहाँ जमुना जी जाएंगे और चले जाएंगे वापस। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों ने बहुत तपस्या पुण्य कर किया होगा, इसलिए राधा रानी जो है आपको अपने घर बुला रही है, जहाँ पर उनकी सबसे दिव्य और उत्कट लीला होती है, एकदम क्या वॉट यू कॉल्ड इंटेंस पास्ट टाइम्स दे आर परफॉर्म ओवर हियर। तो भगवान कहते हैं कि मैंने वैकुंठ धाम को छोड़ा है, वहाँ के ऐश्वर्य, वहाँ का जो ऑपुलेंस है उसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं यहाँ के गोपियों के हाथ का माखन और छाछ खाना चाहता हूँ। आई हैव लेफ्ट वैकुंठ, सैक्रिफाइस वैकुंठ ऑपुलेंस। आप समझ सकते हैं वैकुंठ में क्या चीज है, जहाँ पर अनंत लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शतकोटि संभ्रम सेव्य मानव, एक लक्ष्मी नहीं कोटि लक्ष्मियाँ सेवा करती हैं। और एक लक्ष्मी का क्या ऐश्वर्य जानते हैं आप? एक बार लक्ष्मी और विष्णु ने झूठ मूठ का ऐसा प्रेम प्रेम में झगड़ा किया था, कुछ कुछ हो गया ऐसे, तो एक कंगन टूट के गिर गया उनका, लक्ष्मी जी का। वो कहते हैं कि पूरा जो 14 भुवन है ना, 7 स्वर्गलोक 1 पृथ्वीलोक और 6 नरकलोक, इसका जो इकोनॉमिक्स है वो टूटे हुए कंगन पे चल रहा है, और ऐसे कई कंगन उसके हाथ में है, गिरे नहीं अब तक, और कई गले में भी है, कई कान में भी है, कोई बाजूबंद है, कई सब जगह लगे हुए हैं, कमर पट्टा भी है और पायल भी पहनती है वो। ऐसी एक लक्ष्मी है, इसका ऐश्वर्य ऐसी सत संभ्रम कोटि लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, वो ऐश्वर्य त्याग करके वो यहाँ आते हैं नंगे पैर घूमने के लिए और गोपियों का छाछ खाने के लिए, और वो भी फ्री में नहीं मिलता है उनको। बोलते पहले नाचो, हम तालियां बजाएंगे, आप पहले नाचो फिर माखन मिलेगा, नहीं नहीं माखन खिलाओ, नहीं नहीं नाचो नाचो पहले नाचो नाचो बांसुरी बजाओ, बजाते हैं नाचते हैं ठुमक ठुमक के, फिर उनको एक हिस्सा माखन का खिलाते हैं, बोलते और दो, बोले और नाचो, फिर और नाचते हैं, फिर और देते हैं, नहीं वो मटके का दो, दूसरा नाच करो फिर करो, फ्री नहीं है, मतलब वो अपने गोपियों के सामने एक नाचने वाला बालक बनने को तैयार है। इसलिए बहुत लोग संतों ने वर्णन किया है कि हम किसी को नहीं पूछते, भगवान को भी नहीं पूछते, हम नंद महाराज को पूछते हैं। क्यों? अरे नंद महाराज कितने महान व्यक्ति हैं, अरे वो इतने महान है कि उनको आनंद देने के लिए परब्रह्म जो है, सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण परब्रह्म जो है, वो बालक बन के उनके आंगन में रेंग रहा है, उनको रिझा रहा है, उनको खेल रहा है, उनके नंदे नंदे पांव से तोतले तोतले बोल से उनको आनंद दे रहा है। कितना पुण्य क्या होगा नंद महाराज ने कि उनके घर में परब्रह्म जो है बालक बनकर उनको आनंद देने के लिए। आप सोच सकते हैं बालक जो आनंद होता है ना, आनंद वो सबसे बढ़िया होता है। बालक का तोतले बोलना, गिर जाना, चलना, फिर ऐसे ऐसे करना, वैसे कितनी माताएं कितना बात करते रहती हैं। जो नए नए बच्चे होते हैं तो दोस्तों के साथ ये बातें करते हैं, आज बच्चे ने ये किया, आज वो किया, ये किया, नया कपड़ा लाया, ऐसे किया, पट्टी किया, पेशाब किया, फिर रोया, फिर खाना खिलाया, फिर ये किया, वो किया, दिन भर बातें करते रहते हैं। आप सोच सकते हैं अगर परब्रह्म आपका बालक बन जाए तो क्या करेंगे आप, दिन भर क्या, जिंदगी भर बोलते रहेंगे उनके बारे में। यही ब्रज की लीला है, जीवन भर राधा रानी सॉरी यशोदा मैया नंद महाराज जो है वो दिन भर यही बोलते रहते हैं, आज कृष्ण ने क्या किया और आज क्या करने वाले हैं और कहाँ गए हैं, कब आएंगे लौट के, उनको तैयार करके भेजना, दिन भर इंतजार करना, उनके बारे में बात करना। जब मक्खन बना रहे हैं, मंथन हो रहा है, तो उनके गीत गा रहे हैं, जो कल उन्होंने लीला किया था उसका आज उसका गाना गीत गा रहे हैं, और भगवान और लीला कर रहे हैं। शाम को आके ग्वाल बाल बोल रहे हैं, आज ऐसा किया वैसा किया, कल के मंथन में फिर नया गीत बनेगा। हर वाक्य वहां पर गीत है, हर कदम जो है वो नृत्य है, ऐसा धाम है ये। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्कट लीला यहां पर प्रकट हो गया है। और ये गोपियों का छाछ जो है वो ऐसा मत समझो कि भगवान के लिए कोई बहुत कीमती वस्तु है, वो तो कहीं भी मिल सकता है उनको, लेकिन जो वो प्रेम को प्राप्त करते हैं, जिस प्रेम से उसको बनाते हैं, उस प्रेम के भूखे हैं वो, इसलिए वो भीख मांगते हैं, उनको गोपियां निर्भत्सना करती है, उनकी निंदा करती है, उनको बुरा बुला बोलती है, वो भी सहन करते हैं, चोरी करते हैं, परम ब्रह्मज भगवान क्या चोरी की जरूरत है, सब तो उनका ही है। लेकिन जब भी उनके घर में जाकर चोरी करते हैं, डांट खाते हैं, दंड भी होता है, कभी कभी अरेस्ट भी होते हैं, कभी कभी उनको एम्बरेस भी कर देते हैं, कभी उनको संकोच भी हो जाता है, सब कुछ होता है, फिर भी वो आते हैं बार बार, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम को चखने के लिए आते हैं। तो ऐसी है भूमि। तो अभी हम आपको वहां पर जो मंदिर है उसकी थोड़ी कथा बताएंगे। उस मंदिर में एक नारद मुनि के अवतार हुए, उनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी। वो ऊंचे गांव में रहते थे, ऊंचा गांव जो है वो राधा रानी के सखी है ललिता देवी, उसका गांव है। ये जो बरसाना है ये कमल की तरह है, बीच में जो कमल का जगह होता है ना उसको बोलते हैं वर्ल ऑफ लोटस, एक बीच में खाली जगह होती है कमल में, बहुत सुंदर होती है, वो बरसाना है। और उसके आठ पंखुड़ियां हैं, आठ गांव हैं, उसमें आठ सखियां विराजमान हैं, ललिता देवी, विशाखा देवी, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, सुचित्रा देवी, ऐसे आठ उनकी प्रधान सखियां हैं, उनको महासखी भी कहते हैं। उनके आठ गांव हैं यहाँ पर, तो कमल की तरह उनकी आठ दिशा में, चार आठ दिशा में आठ गांव हैं, वहां पर विराजमान है सब लोग। तो नारायण भट्ट गोस्वामी वहां पर प्रकट हुए थे ऊंचा गांव में, उच्च ग्राम कहते हैं उसको, जो ललिता देवी का गांव है। उनके पिताजी अशोक गोप हैं, वहां पर विराजमान है। तो उनको स्वप्न आया था कि हम यहाँ पर जमीन के अंदर पहाड़ के अंदर हैं, इस मूर्ति को कृष्ण के जो नाती हैं, ग्रेट ग्रैंडसन, उसका नाम है वज्रनाभ। छोटी इसकी भी कहानी बता देता हूँ कि जब भी भगवान अंतर्धान हो गए तो उत्तरा देवी वहाँ पर थी, रुक्मिणी भी अंतर्धान हो गए सब पत्नियों के साथ में, और उत्तरा देवी वहाँ पर विराजमान थी। तो उत्तरा देवी के निर्देश में कई मूर्तियाँ बनाई गई, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी और लाडली लाल जी, और बरसाने बलदेव की मूर्ति, ये सब बनाए गए। तो 5000 साल पहले कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद में वज्रनाभ ने ये मूर्ति यहाँ पर स्थापन की थी, लाडली लाल, मोस्ट बिलवेड एंड मोस्ट बिलवेड, नाम ही कितना सुंदर है उनका, लाडली मतलब राधा रानी और लाल मतलब कृष्ण। तो समय के अनुसार यथावकाश वो लुप्त हो गई मूर्ति पत्थर में। तो स्वप्न दिया भगवान ने नारायण भट्ट जी को, तो नारायण भट्ट जी ने झट से आए यहाँ पर वो, और जहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति उसके बाजू में आज भी पद चिन्ह है राधा रानी के, वहाँ पर वहीं पर राधा रानी की मूर्ति प्रकट हुई थी, उन्होंने उसको खोद कर प्रकट करवाया था और दोबारा स्थापन करवाया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो चरण चिन्ह है वो एग्जैक्टली जो मूर्ति है उनके चरण चिन्हों से मिलती है साइज में, क्योंकि वो रोज सेवा करते हैं उनकी, रोज चरणों को सेवा करते हैं, आरोपते हैं उनको। वो कहते हैं कि उनके चरण चिन्ह का जो वहां पर प्रिंट है वो एग्जैक्टली राधा रानी के चरण के समान ही है। तो फिर सेवा आरंभ हुई, जब मुगलों का आक्रमण हुआ आप जानते हैं ना, सब जगह मुगलों ने यहाँ पर मंदिर तोड़ दिया, फिर गोविंद जी का मंदिर 7 मंजिल का था, 5 मंजिल तोड़ दिया, 2 ही मंजिल रखा, जितने भी डायरा मास थे वो सब उसको छेद कर दिया उन्होंने पूरा। यहाँ पर भी आए थे वो मेव, यानी कि वो ऐसा ही मुगल का कुछ टाइप है उसके अंदर। तो जब आक्रमण हुआ तो उस समय राधा रानी ने प्रेरणा दिया गोस्वामियों को, चलो मुझे श्योपुर ले जाओ, यानी राजस्थान में गाँव है यहाँ पर, तो श्योपुर के राजा ने बड़े प्रेम से उनको स्वीकार किया और यहाँ के गोस्वामी को सेवा करने के लिए वहां ले गए, श्री जी की मूर्ति को वहां विराजमान किया श्योपुर में। और कुछ साल भी थे वहां पर, श्योपुर के राजा को भी बहुत आसक्ति हो गई राधा रानी से, क्योंकि उनके धाम में उनके घर में विराजी वो मंदिर बनवाया बड़ा उन्होंने। और फिर यहाँ के भक्तों को गोस्वामियों को फिर विरह शुरू हुआ, कह रहे अभी तो सब आतंक खत्म हो गया है, अभी राधा रानी को वापस आना चाहिए। तो कुछ गोसाई लोग वहां पहुंचते हैं राजा के पास, कहते हैं कि इनको अभी भेज दो वापस। राजा कहते हैं नहीं, मैं तो अभी मेरे पास ही रखूंगा उनको, जो राजा है उसके पास अधिकार शक्ति सब कुछ है, वो कैसे उसकी बात टाल सकते हैं। तो बड़े निराश होकर यहाँ के भक्त जो है बरसाने के लौट आए और प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। तो श्री जी थोड़ी ऐसी हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं मेरे भक्त वहाँ बरसाने में मेरे घर में रो रहे हैं और मैंने यहाँ पर अभी काफ़ी निवास कर लिया है, मुझे भी चलना चाहिए उनके प्रेम को प्रतिसाद देने के लिए। तो फिर एक दिन वो, आप एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, ये अभी आपके सामने मूर्तियाँ हैं यहाँ, राधा कुशल बिहारी हैं वहाँ पर, लाडली लाल हैं, वो बोलते तो नहीं हमारे साथ ना, लेकिन जो भक्त शुद्ध बन जाता है हृदय से, उनसे ये विग्रह बोलते हैं। राधा गोविंद जी रूप गोस्वामी से बात करते थे, राधा मदन मोहन जी सनातन जी से बात करते थे, हाँ गोपीनाथ जी मधु पंडित से बात करते थे, सभी आचार्यों के साथ विग्रह ने संभाषण किया हुआ है। तो बैटरी खत्म, जल्दी करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री जी यानी कि लाडली जी विग्रह से बोली अपने गोसाई को, किशोरदास गोस्वामी को, कि मुझे ले चलना अभी आप। वो बहुत बड़े हो गए थे किशोरदास जी, वो कह रहे हैं मैं कैसे ले जाऊंगा, राजा का इतना पहरा है। और जब भी वो यहाँ से गए थे गोस्वामी लोग बोलने के लिए वापस भेजो, तो राजा को वो डाउट आ गया कि गोस्वामी भी हमारा जो लाया हुआ है वो उधर का ही है, पता नहीं मिल जाएगा उनसे तो श्री जी को लेकर भाग जाएगा वो दिन। तो जैसे ही ये गोसाई यहाँ से गए और मना कर दिया, लौट के आ गए, तब से राजा ने क्या किया, पहरा लगा दिया मंदिर पे, सभी ऐसे सोल्जर लगा दिए और एक नियम बना दिया कि चाबी मेरे पास रहेगी, सुबह जो गोस्वामी जी हैं किशोरीदास जी मेरे घर पे आएंगे, चाबी पिकअप करेंगे, मंदिर खोलेंगे, सेवा पूजी करेंगे, मंगला करेंगे, भोग आरती करेंगे, राजभोग करेंगे, उत्थापन करेंगे, संध्या आरती करेंगे, शयन आरती करेंगे, चाबी मुझे ला के देंगे वापस विद सोल्जर, फिर विश्राम करने जाएंगे, सुबह फिर आएंगे और चाबी लेके मंदिर खोलेंगे। इतना टाइट बंदोबस्त किया था उसने, डाउट था उसको कि पता नहीं इनका गोस्वामी को क्या होगा, लैंड करके भगा ले जाएंगे मूर्ति। तो किशोरीदास जी बोलते हैं लाडली जी से, श्री जी से बोलते हैं कि कैसे ले जाऊंगे, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, इतना पैरा लगा हुआ है, मैं कहाँ भागूंगा आपको लेके, मुझे पकड़ के मार देंगे लोग, राजा के सैनिक लोग। तो कोई बात नहीं, आपको ले जाना है, अभी आप स्वामी नहीं हो, आप ही तरीका बताओ यहाँ से भागने का। तो राजा रानी स्वयं बताती है उनको, देखो ऐसा है, अंदर के गर्भगृह में जहाँ पर मैं विराजमान हूँ उसके ऊपर खिड़की है, रात को जब लॉक करके जाओगे मुझे, उसकी चटकनी खोल के जाना, उसे उड़ के रखना लेकिन चटकनी निकालना, मतलब वो बोल्ट जो है वो निकाल देना और चाबी पहुंचा देना राजा के पास। तो रात को पीछे से आके चटकनी का दरवाजा खिड़की खोल के अंदर से कूदना और मुझे लेकर उसी से भाग जाना। बढ़िया प्लान बनाया आपने, कोई बात नहीं, रात को शयन कराते हैं उनको और चटकनी खोल लेते हैं, खिड़की खुली रखते हैं, राजा को चाबी देते हैं, खुद सोने का बहाना करते हैं। सब लोग पहरेदार, अभी क्या मंदिर बंद है, अभी क्या, चाबी तो राजा के पास है, सब सो जाते हैं। तो बीच रात में ये किशोरदास बुढ़ा गोस्वामी वहां पहुंचता है, चटकनी खोलता है, खिड़की खोलता है, अंदर कूदता है और राधा रानी को उठा के कहता है, राधा रानी कहते कोई अलंकार मत लेना, सब कुछ छोड़ना है यहाँ पर, मुझे ऐसे ही उठा ले जाना, सब कुछ छोड़ देना, मुकुट वगैरह सब। और वो जब खिड़की से भागता है तो इतना चलने को उसको कष्ट है, ऐसा व्यक्ति है वो, पता नहीं उस दिन उसके शरीर में कहाँ से शक्ति आ गई थी, जैसे हवा की गति से भाग रहा था वो, इसके मानो पाव ही उसको जमीन पे नहीं लग रहे थे, हवा से ही ऊपर ऊपर से ही भाग रहा था। उसको भी आश्चर्य होता है कि मैं कैसे भाग रहा हूं और शक्ति कहां से आ रही है। बोले श्री जी की कृपा आई है। तो बीच रात में ठंड के अंदर भाग रहा है, तो चार घंटा तो भागा वो चंबल के किनारे में आया, चंबल किनारा जो बीच में है ना, उधर चंबल का जो खाई है वहां पर पहुंच गया। तो ये साधु लोग क्या करते हैं, मंगला के समय अपने विग्रहों को प्रकट कराते हैं, झाड़ में लगा देते हैं, झूला बनाते हैं, सेवा पूजा करते हैं, फिर आगे चलने लगते हैं। तो उन्होंने अपना नदी में स्नान करने के लिए ब्रेक ले लिया, राधा रानी को टंग लिया उधर झाड़ के शाखा पर, स्नान करके अपना पूजा अर्चा आरंभ किया उसने, कुछ फल वल थे उसको भोग लगाया, आरती किया, पूजा किया। यहां मंगला का समय हो गया, बोले पुजारी नहीं आया, बीमार हो गया क्या आज, वो समय हो गया, दिन ऊपर आया तो भी पुजारी नहीं आया, तो जाओ देखो क्या हुआ है। पुजारी क्या कर, पुजारी घर में तो नहीं है, पुजारी मंदिर में आया तो मंदिर का खिड़की खुला हुआ है, चाबी खोल के देखते तो बंदर श्री जी गायब है। जाओ सैनिकों भागो, दौड़ो चारों दिशा में, जाको देखो वो पुजारी गायब है, उसी को लेकर वो भाग गया है। तो ये भाग भाग के आते घोड़े की स्पीड से उधर आते, तो मंगला चल रही है उनकी चंबल के खाई में, और वो जब बीच में पानी है और वो उस पार चले गए हैं, और यहां से हे पुजारी रुको, राजा की आज्ञा है, कहीं रुक जाओ। तो श्री जी को बताते हैं पुजारी, अरे देखो हमने कहा था आपको कि हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, बेचारे बूढ़े हैं, हम कैसे भाग पाएंगे आप। बोलो कोई बात नहीं, तुरंत मुझे पैक करो और भागो यहां से अभी आप। बोले मैं कैसे भागूंगा, वो तो घोड़े पे सवार है, मैं तो चलने वाला आदमी हूं, कैसे करूंगा मैं, कोई चिंता मत करो। तो बोले ये तो पानी है, मैं कैसे जाऊंगी यहां पर, जाऊंगा कैसे, गहरा पानी है। बोले कोई चिंता मत करना, मुझे ले लो गोद में ऐसे छाती पे लगा लेना और कूद जाना। बोले कूद जाऊं इतनी गहरी खाई में, बोले कुछ नहीं होगा आप। तो वो श्री जी के शब्द के विश्वास के ऊपर जो है उनको लेके कूद जाता है, पर एकदम घुटने से पानी हो जाता है, उनको कुछ चोट भी नहीं आती, इतना लंबाई से कूदते हैं कुछ नहीं होता उनको, आराम से चल रहे हैं पानी से। और वो सैनिक चिल्ला रहा है रुको रुको रुको, वो देख रहे हैं अरे ये तो कूद गया बुढ़ा आदमी बिल्कुल बिंदास में कूद गया एकदम। और जो घोड़े को डालने की कोशिश करते हैं, तो घोड़े जो है ना अचानक ऐसे घोड़े जो है वो स्विमिंग कर सकते हैं, और चलो घोड़ों को चलाते हैं पानी से स्विमिंग करके इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य हुआ उस दिन, चमत्कार हो गया कि वो जो घोड़े जो है वो पानी को देख के रोने लगे, चीखने लगे, और पानी में जाने को तैयार नहीं है, और पीछे 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 भाग रहे हैं। और बाद में बहुत कोशिश करने के बाद में घोड़े भाग के दूर चले गए, तभी सैनिक कैसे आएंगे, उनको तो इतनी हिम्मत नहीं थी वो जल में कूद जाए, ऐसे वो बुढ़ा कूदा था। तो वहां से चिल्लाते रहे, और बुढ़ा आराम से पानी जो है इतना पानी में पार करते हुए चला गया। और वहां पर कितना पानी था, कई आदमी डीप, और घोड़ा अंदर घुसने को तैयार नहीं। फिर वो आगे चल के मध्य प्रदेश के बॉर्डर क्रॉस करके यूपी बॉर्डर में आ जाते हैं। तो फिर आराम से वो चल के कई दिन में यहाँ पहुंचता है श्री जी के मंदिर में, और वहां पर बहुत स्वागत होता है, बड़ा उत्सव मनाते हैं, बहुत जोरदार उत्सव मनाते हैं श्री जी के पुनरागमन का। और फिर राजा आते हैं, ईश्वरीय राजा जो था, कहते हैं श्री जी को चाहिए। बोला अभी तो हम यूपी में हैं, आपका राज्य यहाँ समाप्त होता है, हम श्री जी को नहीं भेजेंगे। निराश होकर राजा लौटता है, तो दान भी देता है सेवा करने के लिए, बहुत प्रेम था उसको श्री जी से। इस तरह से श्री जी वहां पर दोबारा विराजमान हो गई, ये इस मंदिर का इतिहास है। और बीच में और एक लीला हुई थी, यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया था मंदिर को नष्ट करने के लिए। तो उस समय श्री जी के मंदिर में देखो दो सखियां खड़ी है, देखा आप साइड में दो सखियां हैं, ललिता और विशाखा खड़ी है। तो श्री जी चली गई है शिवपुर में, तो विशाखा देवी को वो कृष्ण के बगल में विराजमान करते हैं राधा रानी के प्रतिनिधि के रूप में, और मुगल अटैक करते हैं, तो मानो उस दिन बरसाना नष्ट होना था। तो ऐसे ही विशाखा देवी की कृपा से यहाँ पर अनंत सैनिक शस्त्र लेकर जगह जगह प्रकट हो जाते हैं, मुगलों से कई गुना अधिक सैनिक जो है जगह जगह प्रकट होते हैं, और सबको मारकर खत्म कर देते हैं और बरसाने का रक्षण करते हैं। इसलिए उनका नाम है विजय लाडली जी, विशाखा देवी का अलग नाम यहाँ रखा गया है, विजय लाडली जी। यानी लाडली जी की जो प्रतिनिधि थी वो विजय प्राप्त किया उन्होंने, बरसाने को बचाया। और फिर उसके बाद श्री जी लौट के आई हैं, फिर विशाखा देवी को अपनी जगह पर खड़ा कर दिया गया है, और श्री जी को अपने जान पर विराजमान किया गया है, ये इसका इतिहास। इसलिए आरती जब करते हैं मंगला में, पहले मेन मूर्ति का आरती करते हैं, फिर वो पुजारी 90 डिग्री में टर्न हो जाते हैं और कहीं ऐसा अलग जगह पे आरती घुमाते हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता है, वो विशाखा देवी की आरती करते हैं विजय लाडली जी की, और फिर जनता की ओर आरती प्रसादी की आरती घुमाते हैं। इस तरह से मंगला होती है। आप मंगला में कभी आएंगे तो आपको हाई कैंप में आइए तो मंगला भी मिलेगी आपको, सुबह 5 बजे होती है। तो इस तरह से ये मंदिर की जो कहानी है कुशल बिहारी जी की, ऐसा है कि ये जयपुर के राजा ने बनाया हुआ मंदिर है, बहुत भक्त था। जयपुर के जितने भी राजस्थान के राजा हुए हैं सब वैष्णव राजा हुए हैं, क्षत्रिय थे और वैष्णव थे, भक्त थे भगवान के। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तभी सभी मूर्तियों की रक्षा जो है वो जयपुर के राजपूतों ने की थी। आज भी जो मूल विग्रह हैं राधा मदन मोहन जी, मूल राधा गोविंद जी और मूल गोपीनाथ जी और मूल जितने भी विग्रह हैं वो सब जयपुर में विराजमान है, और उनकी प्रतिभू मूर्ति जो है रेप्लिका उनको यहाँ पर स्थापन किया गया वृंदावन के अंदर। तो राधा रमन जी, बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी ओरिजिनल हैं, बाकी सब जो है ओरिजिनल जयपुर में विराजमान है। तो वैसे ही जयपुर का एक राजा था, उन्होंने बड़ी ऐसी इच्छा की कि वहां पर मंदिर में इतनी सेवा नहीं हो रही है, चलो मैं बढ़िया मंदिर बनाता हूँ, यहाँ पर श्री जी को शिफ्ट करता हूँ। तो इसने इतना सुंदर बनाया मंदिर, अभी ये कम से कम 500-600 साल पुराना मंदिर है, इसकी देखेंगे बारीकी से इतना काम किया गया इसके अंदर, आप देखते रह जाएंगे, इसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, लेकिन आज भी आप देखेंगे एक 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 बारीकी से देखेंगे इतना सुंदर काम यहाँ पर किया गया है। पता नहीं इतना पत्थर कैसे वो नीचे से ऊपर उठा के लाए होंगे, कैसा उसको कार्विंग किया होगा, कैसे एस्टेब्लिश किया होगा, आज इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर ये बड़ा शान से खड़ा है महल। पूरा मंदिर रेडी हो गया, फिर राजा ने अपने अधिकार में श्री जी की मूर्ति यहाँ लाने का प्लान किया, और कल वो मूर्ति लाने ही वाले थे, यहाँ पर स्थापन करने ही वाले थे, तो आज रात को उनको स्वप्न आया और श्री जी महारानी ने प्रकट होकर कहा कि वो मेरा चिरंतन घर है भानुगढ़, वहां से दान करके मुझे आप शिफ्ट नहीं कर सकती, इसलिए प्लान को आप रोक लीजिए अपने। राजारानी ने आदेश दिया कि वो मेरा निजी घर है, चिरंतन धाम है मेरा, वो वहीं पर मैं रहती हूँ, मेरा निवास स्थान है, वहां से आप मुझे बदली नहीं कर सकते। इसलिए राजा ने वो प्लान कैंसिल कर दिया और यहाँ पर नए विग्रह को स्थापन किया, जिनका नाम है राधा कुशल बिहारी जी, कुशल बिहारी जी का मंदिर यहाँ पर है। तो राधारानी के आदेश से ही उन्होंने प्लान कैंसिल करके नया मंदिर में नए विग्रहों को स्थापन किया। आज ये मंदिर राधा कुशल बिहारी के नाम से प्रसिद्ध है, जयपुर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर देवस्थान विभाग में इसका मैनेजमेंट होता है। जय जय श्री राधे श्याम। एक चटपटी लीला आपको बताएंगे यहाँ पर कि राक्षसों को क्यों दूर रखा है इधर, हाँ कैसी लीलाओं को वर्क करने के लिए उनको दूर रखा है यहाँ से। तो आप जानते हैं हमारे जो कन्हैया जी हैं नंबर वन के चोर है ना, चोर शिरोमणि कहते हैं उनको, उनके चोर शिरोमणि का एक अष्टकम किसी संत ने लिखा है, चोर अग्रगण्याष्टकम। मतलब क्या, चोरी करने में जो अग्रगण्य है सबसे माहिर है उनका गौरव करने के लिए 8 श्लोकों का एक भजन लिखा गया है, संस्कृत में है वो। ऐसे हमारे चोर शिरोमणि कृष्ण भगवान जो है हमेशा गोपियों को परेशान करते रहते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं, जहाँ जाए उनका कभी ये मणि निकाल लिया, कभी राधारानी का ये खींच लिया, कहाँ से नथनी निकाल लिया, कभी कुछ बाजूबंद निकाल दिया। घर लौटते हैं तो माता जी पूछती है क्या श्रृंगार किया था, आधा श्रृंगार तो गायब है। बोले क्या करें माता जी, हम उनको मिलते हैं तो पूरा गायब हो जाता है। कभी कभी बात कर रहे हैं उनसे तो राधारानी का यहाँ का मणि गायब, तो कुछ देर उसको होश आता, अरे मणि यहाँ का था, कहाँ है, कहाँ बताओ कहाँ है। बोले मैंने तो नहीं लिया, नहीं अभी अब तुम्हारा उनको ढूंढते हैं तुम्हारे पास क्या क्या है सब। हाँ सखिया हावी हो जाती है, पकड़ते हैं उनको, उनका जेब में इधर उधर पकड़ते हैं, मणि मिल जाता है। बोले ये कैसे मणि आ गया, पता नहीं, बात करते करते कब मेरा हाथ आपके सर पे गया, कब मैंने उसको निकाला, कब मैं जेब में डाला, ये सब ना अपने आप होता है, मैं कुछ करता नहीं। दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली, दिस इज क्या कहते हैं उसको, अपने शरीर में एक संस्था होती है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है ना वो अपने आप काम करती है, आपकी चिट्ठी बैठ गई तो अपने आप उसको खो जाएंगे, हाँ कुछ लगेगा चटका लगेगा तो अपने आप हाथ निकाल लेंगे, आप खुद ऐसा प्लान ही नहीं करते हैं, आपके सामने कुछ आ गया तुरंत आंख बंद कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, चेता संस्था बोलते हैं उसको, हाँ बायोलॉजी जीव शास्त्र में। और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सोच के करते हैं हम कुछ करना हो तो, ये कहता है कि ये काम मेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता है, चोरी का काम ये इतना सिस्टम में अंदर फिट हो गया कि वो कभी क्या होता है समझता नहीं है। इट्स लाइक ना ऑब्सेशन, कंपल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर है मेरे तरफ से, ये कभी चोरी होती है कुछ समझ में नहीं आता मुझे, ऐसा करके बात टाल देते हैं वो। तो एक बार ये सखियां सोचती है क्या है, रोज का ये झगड़ा है, रोज का कुछ ना कुछ चोरी करना, कभी गहना गया, कभी मणि गया, कभी माखन गया, कभी मटका तोड़ दिया, कितना परेशान करते दिन भर, एक बार सबक सिखाएंगे उनको अच्छी तरह से। एक बार क्या करते हैं, हमेशा उनको वो झगड़ा चलते रहता है गोपियों का सखियों का। एक बार वो आते हैं मिलने के लिए तो कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं करती, मुझे क्या खाएंगे आज आप, अरे मुझे आज कौन सा स्टार से आकाश में, अरे इतना प्रेम से आ गए, अपने आप पूछ रहे क्या खाएंगे क्या करूं आपके लिए। तो वो फिर तुरंत लिस्ट देते हैं, ऑर्डर देते हैं पूरा मेन्यू का कि हमको ये चाहिए, तुरंत सखिया घर जाती है और बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बना के लेके आते हैं। आप जानते हैं सखिया एकदम कुशल रसोई बनाने वाले, सब सखियाँ चंपकलता राधा रानी ललिता विशाखा सब एकदम एक्सपर्ट, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ व्यंजन लेके आते हैं, वापस जंगल में पहुँचते हैं और ये सखाओं को और सभीों को कृष्ण भगवान को बलराम जी को बड़ा प्रेम से खिलाते हैं, मतलब ऐसे एकदम बड़े पंखा देते हुए प्रेम से मीठी मीठी बातें करते हैं, मधुर संभाषण करते हुए बढ़िया से भंजन खिला देते हैं। और क्या होता है भोजन के बाद में, हमारे ठाकुर जी जो है ऐसे आधा लेटते हैं और फिर लड्डू खाते हैं, फिर आधा लेटते हैं फिर बासुंदी खाते हैं, फिर और थोड़ा लेट जाते हैं, फिर वो चंद्रकला खाते हैं, फिर गोलगप्पे खाते हैं, ऐसे करते करते उधर लेट जाते हैं, इतना खाते हैं कि वहीं से उनका हाइपोग्लाइसिमिया होता है, वहीं पर ढेर हो जाते हैं, जैसे गहरी नींद में खो जाते हैं एकदम, बहुत गहरी नींद में। सखियाँ अपना पूरा बांध लेते हैं, पूरा सब उतार लेते हैं उसका, पायल से लेके कमर पट्टा से लेके गले में माला पहनी हुई है, हाथ में बगल बंद, बाजू बंद, कलाई बंद, जितना भी कान में कुंडल है, उधर मणि लगाया है, सब कुछ, वो एक मणि वो जो गजेंद्र ने दिया था भेंट उसको निकाल लेते हैं, इधर मणि माता ने लगाया था उसको निकाल लेते हैं, जो मोर पंख को रखने के लिए एक जंजीर लगाए सोने की उसको उखाड़ लेते हैं, सारा गहना जितना है सब उतार लेते हैं, जाते हैं निकल के। अभी आपको सबक सिखाएंगे, मुरली भी लेते हैं, डोंट फॉरगेट, मुरली के ऊपर बहुत चक्कर है उनका, मुरली के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं सब सखियाँ लोग, चुरा लेते हैं कभी कभी वो, क्योंकि मुरली जो है वो बजाते हैं मुरली को तो ये सब सखियाँ पागल हो जाती है, पता नहीं वो सब कुछ काम छोड़ के भाग जाती है, और फिर पछताती है, अरे क्या है मुरली में जादू है, समझता नहीं, हम तो सोच समझ के कुछ कार्य कर रही हैं, जैसे मुरली बजती है तो सोच समझ ही खत्म हो जाती है, और हम अपना ऐसे जैसे लाइक हिप्नोटाइज रोबोट ऐसे हम भाग जाते हैं उनके पीछे, तो मुरली पर भी उनका थोड़ा सा गुस्सा रहता है हमेशा, तो मुरली भी चुरा लेते हैं, यही सब जड़, सबकी जड़ यही है, जब ये बजती है ना तो हम पागल हो जाते हैं, वो भी चुरा लेते हैं और सब खर जा के लेट जाते हैं। बड़ी देर के बाद में हमारे भगवान ऐसे थोड़ा हजम वजम होने के बाद उठ जाते हैं, देखते हैं तो क्या है, सब मुरली वुरली सब गायब, क्या मैया को वो दिखाएंगे, इतना कस के बांधती है वो पायल जो है ना, वो इतना कस के बांधती है कि जब हमारे कन्हैया नटराज नाचते हैं दो दो मील पायल उड़ती है उनकी, और आते हैं तो एक ही पायल पाँव में, तो तीन तीन कस कस के बांध के मैया कि वापस तीन आ जाए, वो एक भी पायल नहीं पैर में, सब खत्म। तो समझते हैं अंतर्यामी है, ये सब सखियों का काम है, बड़ी अपने आप को होशियार समझते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम भी कोई कम नहीं है, हम भी ऐसा उपाय करेंगे वो पछताएंगी और वापस ऐसा काम नहीं करेंगी। तो फिर वो मैया के पास जाते हैं, बोलते ऐसा ऐसा है, सखियों ने बहुत आज आतंक किया, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको सब लौटा दूंगा, आप चिंता मत करना, सब आपका जो कितना गहना आपने बनाया था मुझे मोर पंख के साथ सब लौके दूंगा, आप थोड़ा रुको आप। और कुछ देर बाद में एक सखी आती है उनके पास ऐसा बड़ा घूंघट लेके, तो बोले भैया मैं बरसाने जाऊं, कन्या की सुंदर मधुर आवाज आती है, पल्लू लटका हुआ है मुंह के सामने, तो ऐसे समय सोचती है कि कोई नई नई भाई बहू होगी ना, मतलब किसी के घर में पोपी शादी करके आई होगी तो लंबा घूंघट लगाते ना वो नए नई दुल्हन होती है, तो लंबा घूंघट मार के नई नई बहू होगी, कोई बात नहीं बेटा जाओ सखियों से मिल के आओ, तो सखी जाती है निकल के बरसाने पहुंचती है, और वहां पर सखियां उनको मिलती है बरसाने के सब, तो कहती हैं कृष्णा, और बेहोश हो जाती तुरंत, तो सखियां कहते अरे इतना प्रेम तो हमने पहले कभी देखा नहीं था, नाम लेते ही बेहोश हो रही, हम भी उनसे प्रेम करते लेकिन हम तो ऐसा बेहोश तो नहीं होते, तो फिर उसको थोड़ा हवा देते हैं उठाते हैं उसको, नई नई भाई गोपी है पता नहीं कहाँ से आई है, नई नई और थोड़ा इकट्ठा होती है सब जमा होते ना, फिर वो सब इकट्ठा होती है, फिर ये होश में आती है उठ जाती है, मतलब शाम ऐसा करके फिर बेहोश हो जाती है, अरे क्या प्रेम है इतना प्रेम, वहाँ पर कोई ईर्ष्या नहीं है वृंदावन धाम में बरसाने में, कोई द्वेष नहीं करता, अरे हमसे ज़्यादा प्रेम करते तो कृष्ण का अटेंशन इस पर ज़्यादा रहेगा, ऐसा नहीं करते, वो सराहना करते हैं उसकी, गौरव करते हैं, अरे कितना प्रेम है, हमारे भी अंदर भी इतना प्रेम नहीं है, तो और संख्या बढ़ जाती है, तो फिर होश में आती है, फिर कुछ चलती है श्री जी के महल की ओर, तो फिर कन्हैया करके फिर गिर जाती है, अरे बाप रे ये तो गड़बड़ हो गया मामला, बहुत देर तक जगती नहीं वो, तो कहते हैं मर जा मर सकती है बेहोश होकर वहीं पर प्राण त्याग देगी कृष्ण के विरह में, कैसे करेंगे अभी, वो जगह जगह गिर रही है जगह जगह, कुछ ना कुछ करके पानी मार के गीत गा के कुछ ना कुछ करके उसको उठा रहे हैं, लेकिन अभी आखिर में जब गिरती है श्रीजी महल के एकदम पास में जोर से पुकार के गिर जाती है, और ना उसके नाक से कोई हवा चलने का निशाना है, कोई रुई लगाया तो रुई भी नहीं हिल रही है, कुछ नहीं है, कोई चिन्ह ही नहीं है, ना सांस चल रही है ना धड़कन चल रही है ना कुछ नहीं है, मतलब गई वो, लेकिन उनको पता था कि नहीं शायद विरह में है, तो ऐसे चिन्ह होते हैं विरह के, अभी श्री जी से जाके सलाह करते हैं, अभी तो हम लोग हार गए अभी समझ, तो श्री जी के पास आते हैं, बोलते हैं ऐसी सखी आई है नई नई लंबा घूंघट मार के नई नई ब्याही हुई है, इतना प्रेम है कृष्ण से, इतनी विरह में है कि वो सहन नहीं हो रहा उसको, अच्छा तो श्री जी भाग भाग के आती है, देखती है तो गिरी हुई है बेहोश में, वो भी कुछ प्रयत्न करती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, वैसे ही बेहोश गिरी हुई है, तो कृष्ण राधा रानी की जो मेन सखियां ललिता विशाखा महासखियां प्रधान सखियां आठों में से दो प्रधान है, वो मीटिंग करती हैं, डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए, अभी इसका जान तो बचाना चाहिए, इतना प्रेम से भगवान को पुकार रही है, तो ललिता कहती है, अरे आइडिया, तुम्हारे पास सारे वस्त्र तो उस दिन तुमने चोरी किए थे, सब पलंकार, मुरली, सब गहना, बाजूबंद, तलाईबंद, सब कमरपट्टा, सब तो है तुम्हारे पास, मुरली भी है, तो हम आपको कृष्ण बना देते हैं, हम आपका श्रृंगार करेंगे, सब सखियों को बुलाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, हम आपको कृष्ण बना देते हैं, आप मुरली लेके ऐसे खड़े हो जाना और मुरली बजा देना, क्योंकि आप ही ने तो उनको मुरली सिखाया ना, तो आपको तो मुरली आती है बजाना, आपको ये पता नहीं होगा शायद, कृष्ण मुरली बहुत सुंदर बजाते हैं, लेकिन उनको मुरली बजाना राधा रानी ने सिखाया था, वो उनकी गुरु हैं मुरली की, तो मुरली बजा लो, एक तान लगा लो मुरली की, तो होश में आ जाएगी, तो फिर सब कामला फिट हो जाएगा। तो अंदर जाती हैं सखियों, बहुत सखियां ऐसी निपुण हैं उनको वस्त्र में, उनको सुशोभित करने में, बहुत सखियां उनको वर्णन है यहाँ पर, तो सखियां जाती हैं उनको सुंदर सजाती हैं, सारे कृष्ण का श्रृंगार है, सब श्रृंगार कृष्ण का है, यशोदा मैया ने लगाया हुआ है, बनाते हैं राधा रानी को श्रृंगार करके, कृष्ण बना के उनको ब्लू पेंट करके उनको लेके आते हैं बाहर, बोले रहो अभी खड़े रहो और बजाओ मुरली, तो मुरली बजाते हैं, तो ये झट से सखी जो है ना ऐसे उठ जाती है, घूंघट फेंक के, पकड़ा ना तुमको अभी हमने, क्योंकि वो कृष्ण भगवान थे, श्यामा सखी बन के आए थे, तब तक घूंघट ओढ़ के रखा था सखी का श्रृंगार करके। जब लौट के गए घर पे, मैया को पूछा, मैया पहचाना कि नहीं, बोले कौन, तुम तो कोई नई गोपी लगते हो, नहीं मैया मैं तुम्हारा कान्हा हूं, अरे तुमने इतना बढ़िया श्रृंगार किया, मैं भी पहचान नहीं पाई तुमको, इतना बड़ा श्रृंगार करके सखी बन के जाते हैं, और जैसे राधा रानी पूरे लूटे हुए माल के साथ प्रकट होती है ना, अपना रूप प्रकट कर देते हैं, बोले तुम लोग बहुत होशियार बनते हो, हाँ मुझे खाना खिला के सुलाते हो, सब चुरा के ले जाते हो, लाओ सब लाओ, अभी सब चीज लाओ, सब उधार के देते हैं, मैया ला के देते, मैया देखो सब तुम्हारा माल जो है मैं लौटा के दे रहा हूँ। तो ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर होती है, उन लीलाओं को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को दूर रखा है, कंस को, इसको, उसको, सबको दूर रखा है। हाँ एक छोटी सी और कथा बताता हूँ निकलने के पहले यहाँ से। जब भगवान ने गिरिराज को उठाया ना, सात दिन सात रात उठा के रखा, एक छोटे से बालक ने, हाँ इतना बड़ा पहाड़, वो भी ऐसा पूरा ऐसा हाथ से नहीं पकड़ा उसको, एक उंगली से ऐसे पकड़ के रखा उसको, शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से पकड़ के रखा सात दिन और सात रात। तो फिर वो उतार दिया, सब कुछ लीला समाप्त हो गई, सब बड़े बड़े ग्वाल बाल जो हैं, वो जिनके छोटे छोटे पुत्र हैं जो खेलते हैं कृष्ण के साथ में, वो बड़े ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए, और भागवत में उसका वर्णन आता है, विस्मय कथा, स्टोरी ऑफ सरप्राइज, विस्मय यानी कि सरप्राइज। तो वो बात कर रहे हैं, अरे तुम्हारा बालक तो कोई देवता लगता है, क्या शक्ति है उसके अंदर, भाई पुतला को मारा, 12 मील लंबी थी उसको मार दिया, कभी झंझावात को तृणावर्त के रूप में मार दिया उसने, अरिष्टासुर को मार दिया, क्या अद्भुत बालक है तुम्हारा। तो ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, हरेक आदमी अपना अपना बता रहा है मत क्या है, ये शायद देवता होगा, शायद कोई सिद्ध योगी होगा, शायद शायद कोई कोई ना कोई ऐसे बात करते रहते हैं। तो ये नंद महाराज ठाका मार के हंसते, तो फिर रोकते हैं, और क्यों हंस रहे हो, वो कहते हैं कि ऐसा है नंद बाबा, कहते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तो गर्ग मुनि ने सब बता दिया था कि ये होने वाला है सब, क्योंकि रिवाज क्या है, जन्म के बाद में कुंडली बनाते हैं, ब्राह्मण आता है फिर उसको दक्षिणा देते हैं, फिर वो उसका भविष्य बताते हैं, तो भविष्य में बोला था उन्होंने कि ये पहले राम थे, उन्होंने राम का रावण का वध किया था, फिर बामन के रूप में आके बलि का उन्हें अहंकार चूर कर दिया था, और अभी कृष्ण के रूप में आए हैं, और ये गोवर्धन को उठाएंगे, ये ऐसे करेंगे, ये लास्ट रचाएंगे, सब वर्णन गर्ग मुनि ने किया था। जैसे ही ये सुनते हैं सब ग्वाल बाल बड़े बड़े बुजुर्ग एकदम गुस्सा करते हैं, क्या गर्ग मुनि आए थे, कभी आए थे, हमको आपने आमंत्रण नहीं दिया, आप समझते हैं कि हम आपके मित्र हैं, आपके बिरादरी के हैं, और हमें आपने नहीं बुलाया कृष्ण बलराम के नामकरण विधि में। तो क्या नहीं, उस समय तो वो संकट था, कंस का आतंक था, उस समय तो इतना संदेश आया था मथुरा से वसुदेव से कि गर्ग को भेज रहा हूं मैं, और उनसे गुप्त रूप में नामकरण करना, उनका संस्कार करना, तो हमने किसी को नहीं बुलाया, केवल परिवार के अंदर गौशाला में जाके छुप कर किया सब कार्यक्रम, बोला हमको कुछ सुनना नहीं है, आपने हमको अपना मानकर अभी अपमान किया हमारा, कई साल के बाद की बात है फिर भी उनका अपमान हो रहा है, बोला अभी नंद को बिरादरी से हद पार करो, निकाल दो यहां से बिरादरी से उनको, नंद ने हमारा अपमान किया है। तो सब लोग उनको बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, नंद बाबा भी विनती करते ऐसा नहीं, समझने की कोशिश करो, उस समय बहुत खराब समय था, संकट का समय था, इसलिए हमने ऐसा किया नहीं, हमको कुछ सुनना नहीं, आप चले जाओ हमारी बिरादरी से। तो उस समय फिर वृषभानु महाराज जो है वो नंद महाराज के बड़े अच्छे मित्र हैं, वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि उस समय बहुत संकट था, आपको समझना चाहिए, क्या नंद का पक्ष लेते हो, इसको भी हद्दबार कर दो। अरे वृषभानु महाराज ने कुछ सिफारिश किया तो उसको भी हद्दबार करने की बात हो रही है, तो कुछ ग्वाल बाल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अरे वृषभानु महाराज का अपमान मत करना, इनकी महाप्रतापी कन्या है ना, इसके ही प्रभाव से यहां पर राक्षस लोग नहीं आ रहे हैं। तभी वो कहानी बताते हैं जो मैंने आपको पहले बताई कि कैसे यहां पर कंस आया था, कैसे कन्या बन गया था, और कैसे ये इसने ही उसको डांटा, डांट फटकार के उस महारथी को डांट फटकार के कन्या रूप में यहां से भगा दिया, लौट के वापस नहीं आया। वो इसी के कन्या के प्रभाव से, उसकी कन्या महाप्रतापी है, उसके महाप्रताप की कन्या के प्रभाव से और डांट से डर कर कंस यहां पर अभी तक नहीं आया है। इसलिए वृषभानु महाराज के बारे में जरा सोच के बात करना, तो फिर सब शांत हो जाते हैं, फिर समझ जाते हैं, फिर नंद महाराज को अपने ही गोद में कर लेते, अपने ही बिरादे में लगते हैं। तो ये यहाँ का रहस्य है, कृष्ण भगवान राधा रानी की जो अंदरूनी लीला है, अंतरंग लीलाएं जो हैं, वो सब यहाँ प्रकट हुई है। ऐसे अनंत लीला है, यहाँ पर भगवान राधा रानी के विरह से व्याकुल होकर कभी मालिनी बनते हैं फूल बेचने वाली, कभी चूड़ी बेचने वाले बनते हैं, कभी ज्योतिषी बनते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनते हैं, कभी झाड़ू वाले बनते हैं, क्या क्या वेद धारण, कभी वैद्य बनते हैं, कभी ज्योतिषी बनते हैं, कभी पामिष्ट बनते हैं, और क्या क्या करके बहाने बन के राधा रानी को मिलने को आते हैं। बोले मैं बड़ा बहुत एक्सपर्ट हस्त सामुद्रिक हूँ पामिस्ट। बोले अरे राधा रानी का पति कौन बनेगा, तेरा बताओ, तेरा बताओ। तो उनके होने वाले पति जो है वही उनका हाथ अपना हाथ में लेके बता रहे हैं, तुम्हारा पति जो है वहां प्रतापी होगा, नीले रंग का होगा, मुरली बजाता होगा और पूरे ब्रह्मांड का मालिक होगा। अच्छा वाह वाह, सब मन में मन बहुत खुश हो रहे हैं, पता नहीं कि वही व्यक्ति हाथ में हाथ पकड़ के भविष्य बता रहा है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर होती है। और ये बरसाना धाम श्री जी का बहुत प्रिय धाम है, यहाँ पर वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और क्या उद्देश्य है इस प्रेम को प्रकट करने का, कि हम जैसे बद्ध जीवों को भी वो प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए, प्रकट हो जाए हमारे हृदय में भी, इन लीलाओं को सुनकर उनके प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हो जाए और हम भी भौतिक दुनिया के आकर्षणों को और प्रलोभनों को छोड़कर कृष्ण भगवान के राधा रानी के शरण में आ जाए। इसलिए वो यहाँ पर आकर पृथ्वी पर लीला करते हैं, उनको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, राधा रानी मना कर देती है कि हम नहीं आएंगे यहाँ पर। कृष्ण भगवान कहते हैं समय हो गया है अवतार लेने का, चलो। जब तक वहां पर गिरिराज गोवर्धन जमुना जी और वृंदावन धाम नहीं रहेगा मैं नहीं आऊंगी। मतलब आपके मन को जानते हुए पहले ही, आपको पूछने के पहले से ही मैंने पृथ्वी पर गौलोक वृंदावन का एक हिस्सा जमुना जी गोवर्धन और वृंदावन के साथ में भेज दिया है, हाँ तब मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे वृंदावन गौलोक वृंदावन से बाहर निकला कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, उनके धाम में नित्य प्रेम की लीलाएं चलती रहती है अनंत, कोई यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आते केवल हम लोगों का उद्धार करने के लिए, अपनी लीलाओं के माध्यम से हम सबके हृदयों को आकर्षित करने के लिए वो यहाँ पर लीला रचाते हैं। और हमारा मन शायद मोहित हो सकता है, हाँ कुछ कुछ अभी हो भी गया होगा सुन के, हम तो इतने योग्य व्यक्ति नहीं बोलने के लिए, क्योंकि फिर भी लीला इतनी परफेक्ट है, इतनी संपृक्त लीला है कि अयोग्य व्यक्ति भी बोलेगा फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ तो असर हो ही जाएगा। और आप धाम में तो बैठे ही हैं, धाम का तो असर है ही, हाँ यही कहता बम्बई में सुनते तो कुछ अलग बात होती, लेकिन यहाँ के रज में बैठे हैं, इस धाम में बैठे हुए हैं जहाँ पर राधा रानी के चरण स्पर्श उपस्थित हैं, कृष्ण भगवान का चरण स्पर्श यहाँ पर हुआ है, ग्वाल बालों का हुआ है, गोपियों का हुआ है, माखन की मटकी फूटी है उनके प्रेम से बनाए हुए, तो धाम तो दिव्य है ही, भगवान से अधिक कृपालु धाम है उनका, उसमें आप बैठे हैं तो हर तरह से आपको भगवान ने अपनी कृपा से ढक लिया है, चल रहे हैं, इनकी रज उड़ रही है, आपके शरीर पर लग रही है, कुछ देर बाद राधा रानी का महाप्रसाद लेंगे नीचे जाके आप, हाँ हर तरफ से भगवान ने आपने सभी इंद्रियों को संतृप्त करने के लिए यहाँ पर इंतजाम करके रखा है, ताकि उनके प्रेम में आप सब लोग भाव विभोर होकर उनके बन जाओ। हाँ जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ से आगे जाएंगे वो दानगढ़ है, दानगढ़ में लीला ऐसी है कि एक जगह है साफरी कोर, वहाँ पर जाके बरसाने से सखियाँ निकलती हैं दूध बेचने के लिए मथुरा जाने के लिए, नंदगांव से भगवान आके रोक लेते हैं उनको, रोज का है झगड़ा, रोज का झगड़ा, रोज भैंस होती है, फिर भगवान उसका मटका तोड़ देते हैं। तो एक दिन सोचते हैं कि अभी यार बहुत उन्होंने हमको तड़पाया है मटके तोड़ तोड़ कर, क्या जवाब दे घर में, एक दिन आइडिया करते हैं, इनको सबको सबक सिखाते हैं। ये बोलते कोई बात नहीं आप मक्खन चाहिए जितना ले लो, अरे आज क्या दिन है, अपने आप अपनी खुशी से राजू से दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा है कि हमारा जो माखन है वो बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से उसको बहुत स्वादिष्ट है वो, अभी हाथ में देंगे तो गिर जाएगा, इतना कीमती जमीन पे गिरेगा तो वेस्ट हो जाएगा ना, आप दोना लेके आओ, दोना मतलब वो होता है ना कप, उन दिनों में मैंने दर्शन किया है, उन दिनों में पेड़ पे रेडीमेड कप्स बनते थे कदम के वृक्ष पर, उसको धोनी कुंड नाम का कुंड है यहाँ पर, उसके पास बहुत ऐसे वृक्ष थे, हमने अभी भी दर्शन किया, अभी नंदगांव में भी अभी पेड़ ऐसे हैं जिसमें कदम के वृक्ष के पत्ते जो हो वो कप बन के ही पैदा होते हैं, और आप निकालो उसमें आप छाछ पी सब पी सकते हो, बनाना नहीं पड़ेगा उसको, जाओ जाओ दोनों लेके आओ। तो सब भागे, आज तो बहुत बढ़िया दिन है, बिना बहस के बिना मेहनत के सब मिल रहा है रेडीमेड, सखियां सब राजी हैं, तो भागते हैं और चढ़ते हैं उन पेड़ों पर कप को तोड़ने के लिए, दोने को तोड़ने के लिए। और जब तोड़ने में व्यस्त है खुशी से, सखियां जाती हैं पीछे से, सबकी चोटियां जो है पत्थर से शाखाओं से बांध देते हैं उनको, सब लॉक कर देते हैं वहां पर। तो जब वो होश में आते हैं, अरे आपको उतरना है सब पत्तों को लेके, तो सब अटके हुए हैं, अरे सब पत्ते अटके, हाथ नहीं पहुंच रहा है, कहाँ लाट के रखा है, कहाँ बांध के रखा है, पता नहीं चल रहा है। तो सभी क्या करते हैं, जब संकट में आते हैं तो सभी सखा लोग हे कृष्णा हे बलराम, बोलो हे कृष्णा हे बलराम पुकारते हैं, क्योंकि जब भी संकट आता है तभी उन्होंने उनका सहायता किया है। जब हरिष्टासुर आया, जब धेनुकासुर आया, सब जगह पर उन्होंने कृष्ण बलराम को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाभाव, तो कृष्ण प्रकट होते हैं, उनको संकट से मुक्त कर देते हैं। तो यहां पर कृष्ण भगवान ही पुकार रहे हैं, हे मधुमंगल ए उज्ज्वल ए रक्तक बचाओ बचाओ, अरे हमारे जो रक्षक हैं वो भी पुकार रहे हैं, हम भी पुकार रहे हैं, हम उनको पुकार रहे हैं, हमको पुकार रहे हैं, क्या स्थिति है। तो हमारे महाराज ने कहा ऐसे क्यों, महाराज आप ही बताइए। महाराज ने कहा देखो यहाँ पर प्रेम का इतना प्रभाव है कि उस प्रेम के प्रभाव से सबके रक्षक कृष्ण बलराम जो है वो भी असहाय हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चोटियां भी बंधी हुई है पत्थर से, मुक्त नहीं हो सकते, वो भी पुकार रहे हैं राधा रानी गो ललिता गोपी बचाओ। अभी बताओ कैसे हम मुक्त हो जाएं, आप उपाय बताओ, कुछ भी करने को हम तैयार हैं। नहीं 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 हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं आप बताओ उपाय बताओ, हम आपका शरणागति आपकी है, आप हमारे तरफ से ऐसा करो, कल हम एक ही शर्त पे आपको छोड़ेंगे, कल आप जो है कृष्ण राधा बन के आना श्रृंगार करके सखी का, और जितने आपने ये जो दोस्त है ना आपके जो सिर माहिर बन के बहुत होशियारी करते हैं, सब लोग सखिया बन कर आएंगे, सर पे मटका लेके घर से मांग के माता से दही दूध सब लेके बन ठन के हमारा जैसे श्रृंगार करके कल आप आएंगे, हमारे राधा रानी कृष्ण बनेंगी और हम सब ग्वाल बाल बनेंगे, डंडा लेके आएंगे आपको रोकेंगे और आपसे मटका फोड़ के खाएंगे, मंजूर लो कोई बात छोड़ देते हम। अगले दिन फिर कृष्ण भगवान राधा रानी बन कर आती, सब सखा सखियाँ बन के आती, राधा रानी कृष्ण बन कर आते हैं, बांसुरी लेकर ऐसे ऐसे घुमाते हुए, डंडा लेकर आते हैं, रोकते हैं उनको, टैक्स दो हमको, आप लोग यहाँ से हमारे एरिया से गुजरते हो और बिना हमको टैक्स दिए हुए मथुरा में जाके कंस को बेचते हो, पैसा बनाते हो, हमको टैक्स देना चाहिए, क्या टैक्स होगा, लोग ये मटका हमको एक मिलेगा तो टैक्स हो जाएगा आपका, एक मटका नहीं सब मटका खा लेते हैं। तो दान बिहारी मंदिर में जो दर्शन है वो कृष्ण को मंगलसूत्र पहना के रखा है, क्योंकि वो कृष्ण नहीं है, वो राधा रानी है, वो कृष्ण बने हुए हैं और राधा रानी जो है वो स्वयं कृष्ण है। तो दर्शन जो है इस भाव से करना, आपको ऑन ऑर्डिनरी आपको लगेगा कृष्ण बल कृष्ण राधा रानी है, लेकिन वो कृष्ण जो है वो राधा रानी है और राधा रानी जो है कृष्ण है। हो सकता है मंदिर बंद भी हो गया होगा, आई डोंट नो, और वहीं पर कृष्ण भगवान ने भी दान दिया था, एक ब्राह्मण रोते रोते आया था कृष्ण के पास, कृष्ण भगवान मेरी की दो कन्याएं हैं, तीन कन्याएं हैं मेरे पास, विवाह करने के लिए पैसा नहीं है, कुछ दान दे दो। तो कृष्ण कहते मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो यहाँ पर चोरी करके खाता हूँ, मेरे पास कुछ धन वन नहीं है। नहीं 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 कुछ करो, तो कृष्ण कहते मेरे पास एक ही धन है, वो है राधा रानी, वो मैं आपको दूंगा। तो बिना बोले राधा रानी का मंत्र बोल को दान करते हैं, अब ब्राह्मण को खुश होना चाहिए ना, वो जो रोने लगता है, बोले तीन थी अभी चार हो गई चार का कैसा विवाह करूंगा मैं, तो बहुत रोता है ब्राह्मण बेचारा, बहुत रोता है। फिर राधा रानी को दया आती है, वो कहते अरे देखो इतना बेचारा ब्राह्मण भक्त है हमारा, एक काम करते हैं, वो सब सलाह करते सब लोग मिलके और कहते राधा रानी को हम पलड़े में रखेंगे और उसके वजन की जितनी श्रृंगार का साधन है ना, पूरा जेवर है अलंकार है सब हम उतारेंगे अपने शरीर से और डालेंगे पलड़े में, और राधा रानी का पलड़ा जब समान हो जाएगा तो सारी ज्वेलरी जो है वो ब्राह्मण को दान कर देंगे। तो उस जगह पर राधा रानी का तुला भार हो गया है, उसको तराजू में रखकर तोला गया है और सब सखियों ने बड़े प्रेम से अपने अलंकार निकाल कर उस ब्राह्मण को दान कर दिए, लेकिन राधा रानी को वो क्या कहते हैं उसका वजन इक्वल नहीं होता है। फिर कोई भक्त जो बड़े प्रेम से तुलसी रखता है उसके ऊपर, फिर वो पलड़ा इक्वल हो जाता है और सारा जो अलंकार है वो ब्राह्मण को दान दे जाता है। वो भी लीला उधर हुई है, उधर एक बड़ा झूले का ऐसा मंडप बना हुआ है, वहाँ पर झूला के उत्सव में राधा रानी को कृष्ण को झुलाते हैं, वो सब दर्शन आपको वहाँ पर होगा। ठीक है, बड़े फास्ट में बताया आपको मैंने, बहुत सुंदर लीला है, लेकिन समय जो है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है, जो किसके लिए रुकता नहीं है। हमको क्या है, जितना समय प्राप्त है उसमें अधिक से अधिक बटोरने का प्रयास करना है, और यहाँ से निकलते ही तुरंत मुंह से राधे राधे हरे कृष्णा करते करते निकलना है, कुछ नहीं और बोलना है, बस केवल राधा रानी का नाम लेना है, उनकी कृपा की याचना करनी है, और श्रीजी धाम में। जय हो, जय हो महाराज जी, जय हो श्री राधे श्याम। ऐसा है, आप इसको पैक कर लो, हम सब लोगों को बांटेंगे प्रसाद में, राजभोग में। वहां पर
क्या लाओ, पन्नी लाओ,
पत्ता कुछ भी ले आओ। हाँ, ये हमारे बड़े प्रेमी ब्रजवासी हैं। हाँ, इनकी मैंने कहा था ना, ब्रजवासी लोग बड़े रेडी भाव के होते हैं, ए वेरी ग्रेटफुल एट हार्ट। 1992 में हमने इनके पिताजी का ऑपरेशन किया था। अभी वो कभी किया था ऑपरेशन, 20 साल होने को आया उसको भी। हर समय आके हमको प्रसाद देते हैं, महाप्रसाद। हाँ, इतना प्रेम से बुलाते हैं, बिठाते हैं, छत पे ले जाते हैं, उनका आनंद दिखाते हैं वहाँ का। अभी अपने आप आए, राजभोग प्रसाद है ये कुशल बिहारी जी का, सबको बांटेंगे आप। हाँ, ऐसे ब्रजवासी होते हैं। एक उनकी तरफ से कुछ भी काम होता है तो वो जिंदगी भर हमको याद करते हैं, और उनकी कृपा जो है ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में, माला के रूप में, प्रेम के रूप में, हाँ सब देते रहते हैं। यही असली ब्रजवासी का लक्षण है। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।